కుంజ విహారీ జయ రాధమాధవ కుంజ విహారీ జయ గోపీజనవల్లభ గిరివరధారీ జయ గోపీజనవల్లభ గిరివరధారీ యశోదనందన వ్రజజన రంజన యశోదనందన వ్రజజన రంజన యమోనతీరావనచారి యమునా తీరావనచారి జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha Giridhare Radha Giridhare Radhe. Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Jaya Jaya Prabhupad, 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 Prabhupad. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయాముదీరయేత్ నష్ట ప్రాయేష భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీ ఉత్తమా శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైశ్చికీ. శ్రీమద్ భాగవతం స్కంద సాత్ అధ్యాయ పాంచ్ శ్లోక్ సంఖ్య 46. వర్తమాన ఆవిదూరే వై బాల అపి అజడదిహి అయం నా విస్మరతి మే అనారయం. సునశేప ఇవ ప్రభో వర్తమానో విదూరే వై బాలోప్యజడదిహి అయం బాలోప్యజడదీర్ధయం నా విస్మరతి మే నార్యం నా విస్మరతి మే నార్యం శునహాశోప ఇవ ప్రభుః శునహాశోపేవ ప్రభుః. వర్తమానో విదూరే వై
మాతాజీస్
Wow.
वर्तमानो विदुरे वै वर्तमानः स्थित होकर अविदूरे अधिक दूर पर नहीं वै निस्संदेह बालः शिशु शिशु मात्र अपि यद्यपि अजडधीः पूर्ण निर्भीक निर्भीत होना चाहिए कानी अयम यह न नहीं विस्मरति भूलता है मैं मेरा अनार्यम दुर्व्यवहार शुनः शेपः कुत्ते की टेढ़ी पूंछ इव सदृश प्रभुः समर्थ होकर अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि यह मेरे अत्यंत निकट है और निरा बालक है फिर भी यह पूर्ण निर्भीक है। यह उस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के समान है जो कभी सीधी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह मेरे दुर्व्यवहार तथा अपने स्वामी भगवान विष्णु के अपने संबंध को कभी नहीं भूलता। तात्पर्य शुनः शब्द का अर्थ है कि कुत्ते की और शेप में शेप का अर्थ है पूंछ। यह उदाहरण अत्यंत सीधा सा है। कोई कुत्ते की पूंछ को सीधा करने का कितना भी प्रयास क्यों ना करे वह कभी भी सीधी नहीं होती, अपितु तो सदैव टेढ़ी ही रहती है। शुनश्शेपा अजीगर्तक के द्वितीय पुत्र का नाम है। उसे हरिश्चंद्र के हाथों बेच दिया गया था, लेकिन बाद में उसने विश्वामित्र की शरण ले ली थी जो हरिश्चंद्र का शत्रु था, और फिर उसका साथ नहीं छोड़ा। ओम अज्ञात विरांदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामेहं ददाति स्वापदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबंधौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आजकल भागवतम की चर्चा में, हर रोज सुबह होने वाले भागवतम क्लास में ये चर्चा हो रहा है कि हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को मारने के लिए बहुत प्रयास किया, प्रयास करने के बाद भी उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। तो हिरण्यकश्यपु ये सोच रहा है अपने मन ही मन में, ये क्या है, इतना उनको मारने के लिए प्रयास किया, उतना उनको सीधा करने के लिए प्रयास किया, कुछ हो ही रहा है। उनके मन में संदेह में एक श्लोक इधर उद्धृत किया गया है, जहाँ कहा गया है कि वर्तमानो विधुरे वही, कि ये मेरे से मेरे बहुत प्रिय है, विधुरे वंत मेरा निकटतम मेरा पुत्र है, ये होने पर भी इतना बड़ा अत्याचार किया उनके ऊपर मैंने, उनको मारने के लिए प्रयास किया, उनको हाथी के नीचे कुचलवाया, पहाड़ के ऊपर से नीचे गिराया, जहर पिलाया, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो एकदम कोई डरता ही नहीं है। जैसे बच्चा होता है पिता को देख के डरता है, लेकिन थोड़ा सा वो गुस्से हो जाएंगे पिताजी तो बच्चा जो डरना शुरू करता है। लेकिन हिरण्यकश्यपु को ये बड़ा संशय होने लगा कि मेरा पुत्र है ये और छोटा सा बालक है, ये डरता क्यों नहीं है ये, और मैं इतना प्रयास किया, उनका मन कभी सीधा नहीं होता है, इतना हद तक कि अगर डरना चाहिए नहीं तो मेरे ऊपर गुस्सा तो होना चाहिए, ये दो में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, या सुधरना चाहिए या डरना चाहिए, या वो जो बच्चा है वो मेरे ऊपर गुस्सा तो होना चाहिए। कभी कभी मान लीजिए कोई पिताजी है बच्चे को डांटते हैं तो डर जाता है, डर के सुधर जाता है, नहीं तो क्या करता है एकदम उग्र रूप धारण करके जितना पिताजी गुस्सा होते उससे ज्यादा गुस्सा होता है, पिताजी को ठंडा होना पड़ता है। तो हिरण्यकश्यपु ने देखा ये दोनों में कुछ भी नहीं कर रहा है, ना डरता है ना गुस्सा होता है, तो इसका जो दिमाग है ये कैसा है, कुत्ते की पूंछ जैसा है। ऐसा कौन सोच रहा है, हिरण्यकश्यपु सोच रहा है अपने, जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना कि ये कुत्ते की पूंछ की जैसे, कितना भी उसको सीधा करो वो कभी सीधा नहीं होने वाला है। जैसे हमारा मन है उसको तुलना किया जाता है कुत्ते की पूंछ के बराबर, उसको कितना भी सीधा करने के लिए प्रयास करेंगे जब तक पकड़ के रहेंगे तब तक सीधा रहता है, नहीं तो वो टेढ़ा ऐसा घुमा रहता है। पता नहीं कितने लोगों ने बचपन में प्रयास किया होगा कुत्ते की पूंछ को सीधा करने के लिए। तुम्हारा हम मन भी जो है वो कुत्ते की पूंछ के बराबर है, जब तक हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम, राम जब करते रहेंगे तब तक वो सीधा रहता है, जैसे छोड़ दिया फिर वापस भूत आ गया, वही वापस जब मंदिर आएंगे बैठे रहेंगे सत्संग में तब एकदम सीधा रहते हैं, हाँ मैं देखो क्या है जीवन में क्या रखा है, केवल भगवान की भक्ति करना है, जैसे वापस घर गए फिर वही चालू। तो एक कुत्ते की पूंछ को बड़ा साधारण उदाहरण है, बहुत सरल उदाहरण है, समझ सकते हैं, प्रभुपाद जी भी लिखते हैं ये सीधा सीधा उदाहरण है। तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा ये प्रहलाद जो है ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता, उनका मन सीधा क्यों नहीं होता, उनके लिए असुर के लिए सीधा मतलब क्या है टेढ़ा, जैसे साधु के लिए सीधा मतलब कुछ और है, असुर के लिए सीधा मतलब कुछ और है, जैसे साधु के लिए सीधा मतलब कृष्ण का स्मरण करना, लेकिन असुर के लिए सीधा मतलब क्या है वो भौतिक भोग करना। प्रभुपाद जी एक बार लिखे कि ये दोनों प्रकार के लोग हैं, भौतिकतावादी और आध्यात्मिकवादी, ये दोनों का विचारधारा विपरीत होता है, वो कभी मेलजोल नहीं करता, वो कोई दिन बोलेगा और उसके लिए रात है, भगवद गीता में इस बात को कहा गया है, भगवान कहते हैं यानिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यानिशा सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम साधारण लोग जो भौतिकवादी होते हैं उनके लिए जो निशा जो रात्रि है उसके लिए वो रात्रि जो संयमी यानी भक्तों के लिए क्या है वो दिन है। इसलिए जो भौतिकवादी लोग बोलेंगे रात है तो नहीं, आध्यात्मिक वाले बोलेंगे दिन है, वो लोग बोलेंगे काला है तो हम बोलेंगे सफेद, ये कभी एक दूसरे के साथ विचार मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए भौतिकतावादी कभी भी वो भक्तों के संग में वो बराबर वो खुश नहीं रह सकता। और एक भक्त जो है भौतिकतावादियों के संग में कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर कोई भक्त को ऐसा बजाए कि आप जाओ जाके भौतिकवादियों के बीच में रहो, वो कभी उधर फिट नहीं होगा, उनको हमेशा उल्टा ही दिखेगा, ये क्या उल्टा कर रहा है। और एक बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर लेक्चर दिया है, कौन पागल है। जैसे आप पागलखाने में जाएंगे तो सारे जितने भी पागल है उन लोगों के लिए डॉक्टर पागल है। आप उन लोगों को देखने के लिए जाएंगे, अब बताएंगे देखो कैसे जी रहे हो, तेरे सुधर जाओ, डॉक्टर को बुलाएंगे, इनका इलाज करो, वो बोलेंगे हम इलाज करेंगे डॉक्टर का। तो ये कभी भी सीधा नहीं बैठने वाला है। तो हिरण्यकशिपु के लिए प्रहलाद का मन टेढ़ा है, लेकिन प्रहलाद के लिए किसका मन टेढ़ा है? हिरण्यकशिपु का मन टेढ़ा है। तो इन दोनों का कभी हमेशा क्रॉस रहता ही है। जैसे मान लीजिए कोई परिवार है, परिवार में एक अच्छी से भक्ति करते हैं और एक भक्ति नहीं करता है, थोड़ा भौतिकता में रुचि है, कभी इन दोनों का विचार मेलजोल करने वाला नहीं है, वो दोनों झगड़ा करेंगे ही। तो इसका मतलब ये है कि भौतिकवादियों का विचारधारा से मेलजोल करके समझौता करना ये हमारे बड़ा अपघात है। ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ सही कुछ है, हमारे लिए कुछ सही है। जैसे अगर बोलेंगे सुबह उठना भौतिकवादियों के लिए क्या है, सुबह उठकर पागल जैसे इतना जल्दी उठ के क्या जाते हैं मंदिर में और कोई काम नहीं किया, सब एक दिन जो छुट्टी मिलता रविवार को उस दिन भी सुबह सुबह भागते हैं मंदिर में, परिवार वाले बोलेंगे। लेकिन उन्होंने कि इतना सूर्य उदय होगा सब कुछ होगा फिर भी सोते रहते हो, शर्म नहीं आता। तो ये दोनों का विचारधारा हमेशा अलग ही रहने वाला है। तो इधर एक बहुत महत्वपूर्ण बात हिरण्यकशिपु ये बात को कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है यानी प्रहलाद, इसका मन जो है, इसका जो मन जो पूरा कुत्ते की पूंछ के बराबर है, कितना भी उसको सीधा करने के प्रयास करो वो हमेशा टेढ़ा ही है। ये क्यों है, वो निर्भय क्यों है, मेरे से जरा डरता भी नहीं है, क्रोधित होता है क्यों? क्योंकि हमेशा उनका मन जो है, उनका चित्त जो है, भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों में लगा हुआ है। तो बिकॉज ही नेवर फॉरगेट्स माई मिसबिहेवियर एंड हिज कनेक्शन विद हिज मास्टर लॉर्ड विष्णु, विष्णु के बारे में कभी भी वो विस्मरण नहीं करता है। तो इसके वजह से उसका जो मन है हमेशा निर्भय और कभी भी क्रोधित नहीं होता है। ये भक्तों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। एक व्यक्ति कितना भी उसको डराने के लिए प्रयास करे वो कभी डरता नहीं है। वो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति कितना भी उसको गुस्सा दिलाने के लिए प्रयास करे, चिढ़ाने के लिए प्रयास करे, वो चिढ़ जाता है। उसके पास एकदम निर्भयता और दूसरा गुण है, वो हमेशा वो धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है, वो कभी विचलित नहीं होता है। ये प्रहलाद महाराज की कौन है, श्रवण के आचार्य है या सॉरी स्मरण के आचार्य है। तो उनका हमेशा चित्त भगवान श्री कृष्ण की चरणों में लगा हुआ है, इसका सबूत यही है। हम कैसे बोल सकते हैं कि हम भक्ति में आगे हैं, हम गए भक्त है कैसे बोल सकते हैं, हमारी बाहरंगिक लक्षण से बता सकते हैं। वो कोई भी चीज से नहीं डरता है। आजकल बहुत सारा बड़ा ये हो रहा है कि आजकल लोगों का नौकरी छूट रहा है, ये होने वाला है, वो हो रहा है, सबका दाम बढ़ रहा है, मेरा क्या होगा। भक्तों को जरा सा भी उसका चिंता नहीं रहता, कुछ भी होने दो कृष्ण है ना। तो ऐसा जो भरोसा रखता है उसको भक्त कहा जाता है। वो कोई भी चीज से नहीं डरता, ही इज नॉट अफ्रेड। जैसे प्रहलाद महाराज 5 साल का बालक है, देखिए कितना उसके ऊपर डराने के लिए प्रयास किया जाता है लेकिन फिर भी उन्होंने डरा नहीं। ये भक्त का लक्षण है। लेकिन जो व्यक्ति उनको मारने के लिए आया, पीटने के लिए आया, सब कुछ किया, फिर ये उनके प्रति जरा सा भी द्वेष नहीं है, जरा सा भी रंच मात्र क्रोध नहीं, कुछ नहीं, ये भक्त का स्टैंडर्ड है। इसलिए हम बहुत सारे भक्ति में कार्यकलापों को करते हैं, लेकिन ये बात के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। किन बातों के ऊपर? ये गुणों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। निर्भयता, अक्रोधा, शांत रहना, ये कितना मेरे अंदर विकसित हुआ है, ये बार बार व्यक्ति को जानना चाहिए। बार बार व्यक्ति को हमें हमेशा विचार करना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसे गुण है कि नहीं, कब प्रकट होगा, कितना हद तक प्रकट हुआ है, ये सब चीज़ों के ऊपर विचार करना चाहिए। खास करके भगवद्गीता और भागवतम और इस प्रकार की प्रसंगों को हम पढ़ेंगे तो ये से गुण हैं, हमको हमारे अंदर आवाहन करने के लिए प्रयास निश्चित रूप में करना चाहिए। तो वैसे तो आज हमको चर्चा करना था जगन्नाथ जी के विषय में, तो रामायण प्राण प्रभु ने कहा कि नहीं, आप थोड़ा भागवतम भी लो, बाद में आप जगन्नाथ जी के बारे में जो बोलना है आप बताओ। तो आप जगन्नाथ जी का वेश कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है कि नहीं आज? कुछ सुंड लगा हुआ है, बोलना चाहिए था सारे लोगों को आज हमारे मंदिर में गणेश जी का दर्शन है। इस्कॉन में गणेश जी होते हैं क्या? नहीं होते, लेकिन आज के दिन हो सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा कहानी बताऊंगा, उसके बाद आज का जो विशेषता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, वह है स्नान यात्रा। भगवान जगन्नाथ जी वो जगत के नाथ है। उपनिषदों में कहा गया है, यो विदधाति कामान नित्यो नित्यानाम चेतनस्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। सारे लोगों की इच्छा को पूर्ण करने वाला अगर कोई व्यक्ति है वो जगन्नाथ जी है। यो विदधाति कामान, सारे लोगों के जिस प्रकार की इच्छा है वो इच्छा पूरा करते हैं। ऐसे कुछ लोगों की इच्छा है, भगवान जो है वो शून्य है, कौन है? बुद्ध लोग है, तो उन लोगों के लिए जगन्नाथ जी बोलते हैं ठीक है मैं भी शून्य हूं, देखो मेरा मुंह गोल है ना। आप देखो मानो या ना मानो, बौद्ध लोगों ने जगन्नाथ जी को बुद्ध के रूप में पूजा किया। कितना? एक साल दो साल के लिए नहीं है, 200 साल तक जगन्नाथपुरी जो है वो मंदिर नहीं था, बुद्ध विहार था। जगन्नाथ जी बोले ठीक है आओ मैं बुद्ध हूं, बुद्ध के रूप में पूजा करूं। और कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं, हमारे जो जगन्नाथ जी है, इधर जगन्नाथ जी नीलाचल के ऊपर, विष्णु नहीं है वो देवी है। तो उन्होंने कहा ठीक है देवी के रूप में पूजा करो। तो कम से कम 50 साल तक एक शाक्त राजा ने, बिहार का एक राजा था शाक्त राजा, उड़ीसा के ऊपर आक्रमण करके उनको एक देवी के रूप में पूजा किया। तो जगन्नाथ जी ही इज ए यूनिवर्सल पर्सन, हर व्यक्ति को आलिंगन करते हैं जो आया, इसलिए हाथ ऐसे आगे बढ़े ना। हाथ आगे बढ़ा मतलब क्या है कि सब लोग आओ, जो जैसे आना चाहते लेकिन आओ जरूर, बस कहीं और जाओ मत। तो ऐसा था कि एक ब्राह्मण था गणपति भट्ट करके, कर्नाटक का था। तो ये ब्राह्मण बड़ा अच्छा सा भक्ति कर रहा था, लेकिन उनको शुद्ध वैष्णव सिद्धांत नहीं मालूम था। वो सोच रहा था कि भगवान जो है ब्रह्म है, अगर वो उनका रूप है तो उनका एक सुंड होना चाहिए। और शास्त्रों को अध्ययन करते करते जब उनको मालूम पड़ा कि अनेकों इतिहास उन्होंने पढ़ा, अनेकों जगह का महिमा उन्होंने पढ़ा, लेकिन जब जगन्नाथ जी का महिमा पढ़ा तो उनको लगा कि भगवान अगर है, ब्रह्म अगर है, तो निश्चित रूप में जगन्नाथपुरी में है और कहीं नहीं है। तो इसलिए मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। और उन्हें पढ़ा, एक बार जो जगन्नाथ जी का दर्शन करता है उसको मुक्ति मिल जाता है। तो एक बार वो निकल पड़ा, बस क्या है घर परिवार से क्या लेना देना, ये लोग तभी तक हमसे प्रेम करेंगे जब तक धन है मेरे पास, धन कमाने की क्षमता है। तो इन लोगों का प्रेम जो है कोई मतलब नहीं है, अगर प्रेम करना है तो भगवान से ही प्रेम करना है, तो जगन्नाथ जी के पास जाऊंगा और जगन्नाथ जी के साथ में रह जाऊंगा, वो जो मेरे साथ करना चाहते करे करके वो निकल पड़ा जगन्नाथपुरी। तो वो चलते चलते गया, तो जगन्नाथपुरी के नजदीक पहुंच रहा था तो बहुत सारे लोग जो है बड़े प्रसन्न होते हुए बड़े बड़े बर्तनों में, बड़े बड़े मटकों में प्रसाद लेके आ रहे थे। उन्होंने पूछा आप कहां से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी का दर्शन किया, प्रसाद लिया और हम आ रहे जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके सबको बांटने के लिए जा रहे। बड़े प्रसन्न होकर जय जगन्नाथ बोल के जा रहे थे। तो ये बड़ा दुखी हो गया, अरे कैसे, क्यों दुखी हुआ? उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा है जो व्यक्ति जगन्नाथ का दर्शन करता है तो मुक्त हो जाता है। अभी ये लोग जगन्नाथपुरी गए जगन्नाथ जी का दर्शन करके, वापस कैसे आ रहे अगर मुक्त हो रहे तो? उनका बड़ा संदेह आया, ऐसा लगता है कि जगन्नाथ जी इधर कोई भगवान वगैरह नहीं है, ऐसा लगता है मेरा विमोहित हो गया, क्या फायदा इतना दूर आया मैं, चलो चाहता हूं इधर कोई भगवान नहीं करके वो जा रहे। तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए ऑलमोस्ट जगन्नाथपुरी तक पहुंच गए, पहुंच के वापस जा रहे हैं। तो जगन्नाथ जी तो सबके हृदय में है कि नहीं, परमात्मा के रूप में? हाँ, तो उनका एक वोट मिस हो रहा है कि नहीं? एक भक्त जो इधर तक दरवाजे तक आके बाहर जा रहा है। तो जगन्नाथ जी को बड़ा आतुरता हुआ, अरे
एक आया मेरे से मिलने के लिए और ये सोचते हो कि भगवान नहीं करके जा रहा है। तो जगन्नाथ ने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास गया। जाके देखो कहाँ जा रहे हो तुम, तुमने कहा कि देखो मैं सोचा कि इधर भगवान है, इधर कोई भगवान भगवान नहीं है, क्योंकि मैं सुना है कि इधर भगवान होता तो एक बार दर्शन करता तो मुक्त हो जाना चाहिए। Somebody has दर्शन वंस, एक बार दर्शन किया तो मुक्त हो जाना चाहिए, तो इधर इतना तक आए लेकिन मुक्त नहीं हो रहे, क्योंकि इधर लोग आते हैं दर्शन करते वापस जा रहे, मुक्त होना मतलब इधर ही रह जाना, उनके 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 साथ में रह जाना, अगर कोई दर्शन करने के बाद जाने का किसी का मन हो रहा है मतलब क्या है, इसका मतलब मुक्ति नहीं प्राप्त हुआ। तो उनके मन में ऐसा विचार था, एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन किया मतलब मुक्त हो गया, तो मुक्त हो गया मतलब कोई भौतिक चीज से आ सकती नहीं, इसका मतलब घर वर सब भूल जाना, ऐसा उनका विचार था। देखिए क्या विचार था उनका, तो वो यही सोच रहा था कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाएगा, बस मुक्त हो गया खत्म, और कोई भौतिक जगत है कि नहीं, मैं कौन हूं मेरा नाम सब भूल जाऊंगा मैं, उनका ऐसा एस्पिरेशन था। क्योंकि वो इस आतुरता से दर्शन करने के लिए भगवान के जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गया, कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना मंदिर जाके आता हूं, जाके आता हूं करके नहीं गया हो, जाऊंगा बस, उसी विचार से गया। तो इसलिए ऐसे विचार से जो भक्त जाते हैं, अब देखिए भगवान तो उनको छोड़ना थोड़ी ना चाहते है, इस विचार से तो आए कम से कम, थोड़ा दुखी हो गया कि ये लोग इधर जाके दर्शन करने के बाद भी आ रहे, मतलब इसका मुक्ति नहीं हुआ, इसका मतलब भगवान नहीं है, इधर कोई भगवान नहीं करके वापस जा रहे थे। तो ब्राह्मण आके उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि ये सब चीजें, उन्होंने घटना कहा, मैं दक्षिण भारत से आया हूँ ये सोचते हुए कि इधर भगवान है, भगवान का दर्शन करने से मुक्ति हो जाता है, अब मुक्त होने के बाद भी इधर लोग जा रहे हैं, इसका मतलब क्या फायदा, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने समझाया, तुम जाओ देखो ये सब लोग जा रहे और आ रहे, लेकिन निश्चित रूप में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी बहुत जगह इस बात को लिखते हैं कि कोई प्रश्न पूछ सकता है, भगवान का दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त हो जाता है, तो ये इस प्रकार समझना चाहिए, किस प्रकार समझना चाहिए, हॉस्पिटल जाने से आप बीमारी से दूर हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, हॉस्पिटल जाएंगे डॉक्टर से मिलेंगे वो दवाई देंगे, वो दवाई लेने के बाद आपका मुक्ति, आपका बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल गया वापस आ गया, कि हॉस्पिटल जाके वापस आने से हो जाता है बीमारी दूर हो जाता है, नहीं, हॉस्पिटल जाके आने से कोई बीमारी दूर नहीं होता है, लेकिन और दूसरे शब्दों में देखा जाए हॉस्पिटल जाने से ही बीमारी दूर होगा। तो वैसे ही हमको अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो हमको जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, तो दर्शन करना मतलब क्या है, दर्शन करना मतलब उनका सेवा करना और उनके द्वारा दिया गया शिक्षाओं का अपने जीवन में उतारना, तब वो मुक्ति प्राप्त होता है। तो ये ब्राह्मण ने समझाया उनको, देखो जगन्नाथ जी का दर्शन करना मतलब उनका दर्शन करना और उनका सेवा करना, यही उनका सेवा करना ही मुक्ति है, जीवा जीवे स्वरूप और कृष्ण और नित्य दास, ये जगन्नाथ जी का दासत्व ही मुक्ति है, इससे बढ़कर कोई मुक्ति नहीं है। तो ये समझ गया, ठीक है अभी मैं जाके उनका सेवा करूंगा करके वो बड़ा उत्साह के साथ गया जगन्नाथपुरी मंदिर में, और जैसे गए उसी दिन था स्नान यात्रा उत्सव, स्नान यात्रा मतलब जगन्नाथ जी का बर्थडे, जैसे जन्माष्टमी होता है ना, जन्माष्टमी मतलब क्या है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, और गौर पूर्णिमा मतलब क्या है, उस दिन चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, नरसिंह जयंती मतलब जिस दिन भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ, और आज भी वही उतना ही महत्वपूर्ण दिवस है जितना गौर पूर्णिमा है, जितना जन्माष्टमी है, क्योंकि आज जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है, और जगन्नाथ जी का जन्माष्टमी के दिन क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण का राधा कृष्ण का अभिषेक होता है कि नहीं, तो वैसे ही आज जगन्नाथ जी का प्राकट्य होने के नाते उनको अभिषेक किया जाता है। वैसे जगन्नाथ जी का अभिषेक तो पानी से होता है, उनको खाली सीधा सीधा पानी ही चाहिए, और छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़े गोल्डन पॉट्स में चाहिए। जगन्नाथपुरी में जाएंगे 108 बड़े सोने की मटकों में जगन्नाथ जी का अभिषेक होता है, और जिस दिन वो भक्त पहुंचे, स्नान यात्रा के दिन बाद में चर्चा करेंगे, ये जो गणपति भट्टा पहुंचे तो जगन्नाथ जी कहां थे? वो स्नान मंडप के ऊपर थे। जैसे जगन्नाथपुरी जो गए भक्त, आपको बड़ा ग्रैंड रोड है ना, जिसके रथ निकलता है, उधर से दिखता है स्नान मंडप दिखता है। वो सबसे सुंदर व्यू है जगन्नाथ जी का, कोई भी हजारों भक्त लोग दर्शन कर सकते हैं। अलग अलग जगह खड़े होके आज जाके जगन्नाथपुरी में देखेंगे, अभी तक तो पूरा जगन्नाथ जी बाहर आ गए होंगे और पूरा जैम पैक रहेगा, आपको हिलने का भी जगह नहीं रहेगा, और सब लोग जगन्नाथ जी का बाहर दर्शन। जगन्नाथ जी केवल दो दिन बाहर निकलते हैं अपने मंदिर से, एक है स्नान यात्रा के दिन और दूसरा रथ यात्रा के दिन। और स्नान यात्रा के दिन अपने जो रत्न सिंहासन के ऊपर निकल के स्नान मंडप के ऊपर बैठते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और पीछे बहुत सुंदर सा डेकोरेशन किया जाता है। और जब ये गणपति भट्ट पहुंचे तो दूर से ही देखे जगन्नाथ जी का, तो लोगों ने कौन ने पूछे क्या है, तो उन्होंने कहा यही जगन्नाथ जी है, हाँ स्नान यात्रा है, इसके वो बाहर आए। तो तुरंत जगन्नाथ जी को देख के बड़ा दुखी हो गया। आप सोचे जगन्नाथ जी को देख के तो सुखी होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, क्यों दुखी हो गया? क्योंकि वो सोच रहा था कि भगवान मतलब उनको सुन होना चाहिए। अरे अरे, एक तो ब्राह्मण मिला, उन्होंने कहा जाके दर्शन करो मुक्ति मिलेगा, तो लेकिन ये तो है ही नहीं भगवान, क्योंकि उनका सुन नहीं है तो भगवान नहीं। तो सोचा कि बड़ा दुखी होके वापस जा रहा था, मैं क्यों आया इतना दूर से, घर परिवार को छोड़ के आया हूं, क्या भगवान नहीं कर, वापस जा रहे थे। जगन्नाथ जी ने सोचा रे क्या हो गया इसको। फिर वो ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान, जाके उनको समझाने लगे, क्या क्या हो गया तुमको? तूने कहा भगवान है तो सुन होना चाहिए, सुन के बिना थोड़ी ना भगवान होते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा तुम ध्यान से देखा कि नहीं, चश्मा वश्मा पहनो, जाके देखो सुन है। उसने कहा ऐसा है क्या, बराबर देखता हूं। तो वापस आए, जब वापस आके देखा तो जगन्नाथ जी को बड़ा सुन है, और सारे जितने पंडे हो सब एकदम भ्रमित हो गए, हमने तो ऐसा ड्रेसिंग नहीं किया था, ये कहां से आ गए सुंड। तो जगन्नाथ जी ने पंडे की, एक हेड पंडा पुजारी होता है, उनके सपने में आके कहा कि एक मेरा भक्त है जो मुझे इस रूप में दर्शन करना चाहता है, इसलिए हर स्नान यात्रा के दिन, जिस दिन स्नान उत्सव होता, स्नान यात्रा गौ स्नान पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा होता है, उस दिन मेरा इस प्रकार का वेश होना चाहिए। तो तब से ये जगन्नाथ जी का ये जो हाथी वाला वेश, हाथी वेश कहा जाता है, ये वेश धारण कराते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि जितना हम उत्साह के साथ भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, जितना उत्साह के साथ हम संकल्प करते हैं, जगन्नाथ जी भी उतना उत्साह के साथ आपको दर्शन देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वन टू वन नहीं, ऐसा नहीं कि केवल हम उत्साह के साथ जाएंगे भगवान ऐसे बैठे रहेंगे, नहीं, वो एक व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चा होता है घर में, 2-3 साल का बच्चा होता है, वो अपनी जो दादाजी है, वो दादाजी बड़े कौन है, जज है, बड़े स्ट्रिक्ट, वो फांसी का सजा देते हैं, बड़े कठोर जज है। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो वो दादाजी को पूरा सूट वूट पहन के आए, तो ये बच्चा बोल के देखता है आप कौन है, घोड़ा बनो, तो उसको घोड़ा बनना पड़ता है। भले बड़ा जज है लेकिन आपकी भक्त की, उनकी पोते से इतना प्रेम करते हैं, उसके लिए वो जैसा चाहते हैं वैसा रूप धारण करते हैं। इसलिए रुद्र गीत में शिवजी भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, रूपम प्रियतमम स्वानम सर्वेंद्रिय गुणांजनम। वो कहते हैं रूपम प्रियतम स्वानम, स्वान मतलब अपने निजी भक्तों को, जो सर्वेंद्रिय गुणांजनम सारे इंद्रियों को पूर्ण तरीके से संतुष्ट करने के लिए वैसा रूप को आप धारण करते हो। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात इधर बताता हूं, चैतन्य महाप्रभु खास करके ये जो आज के दिन से अगले 15 दिन तक जगन्नाथ जी का ये बंद रहता है, पट बंद रहता है, दर्शन नहीं देते हैं, वो समय में जाते थे अलरनाथ। अलरनाथ का विषय में बाद में कहेंगे। ये अलरनाथ विग्रह का महिमा इस प्रकार है कि जब चैतन्य महाप्रभु जाते थे अलरनाथ का दर्शन करने के लिए, अलरनाथ का चतुर्भुज रूप है लेकिन चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते द्विभुज रूप में। तो इसके बारे में आचार्य लिखते हैं कि अलरनाथ का विग्रह मैं चैतन्य महाप्रभु का ये लीला का स्मरण हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधारानी और अन्य गोपी वृंदों से आते थे, तो अलरनाथ को भक्तिसिंह ठाकुर ने कहा कि ये वृंदावन है। अगर वृंदावन है तो वृंदावन में चतुर्भुज कहां से आ गया? तो आपको लीला स्मरण होगा, जब कृष्ण वो रासलीला से गायब हो गए थे गोपियों को विरह प्रदान करने के लिए, उस समय वो ढूंढ रहे थे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो कृष्ण ने क्या किया, आर्टिफिशियल दो भुज धारण किया, चार भुजों को धारण करके उन्हें खड़े हो गए और सब लोग गोपियां आके पूछ रहे थे, हे वासुदेव बताओ मेरा कृष्ण कहाँ है। यार उनको जरा सा रुचि नहीं था चतुर्भुज रूप में, क्यों? क्योंकि रूपम प्रियतमम स्वानम नहीं था, वो रूप जो है उनको प्रियकर रूप नहीं था, गोपियों के सारे अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने वाला रूप नहीं था। तो इसलिए वो चतुर्भुज धारण किए, धारण करके बहुत सारे गोपियां के पूछे मेरे कृष्ण कहां, मेरे कृष्ण कहां है। लेकिन जब स्वयं राधा रानी आई तब उनको रहा नहीं गया, दो भुज गायब हो गए। तो वैसे ही आचार्य लिखते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने जाते थे अलरनाथ को, भले ही अलरनाथ जी का चार भुज है लेकिन चैतन्य महाप्रभु कौन है, कौन सी भाव से आए हैं, राधारानी के भाव से आए, वो आते ही दो भुज गायब हो जाते थे उनके। तो रूपम प्रियतमम स्वाम, जिस प्रकार भक्त भगवान का दर्शन करना चाहता है उसी प्रकार भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। तो ये भगवान का विशेषता है, द्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। ये असलियत में जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, नारद जी को प्रिय रूप है। नारद जी को अनेकों रूपों ने दर्शन किया नारद जी ने भगवान का, लेकिन जब इस रूप में देखे नारद जी ने उनको पूरा प्रणाम करके उन्हें कहा कि हे भगवान ये जो रूप है इतना अत्यंत अद्भुत रूप है, ये रूप को मेरे हृदय में रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये रूप के द्वारा केवल आप मेरे हृदय में निवास मत करो लेकिन आप सारा जगत को ये रूप में दर्शन दो। ये बड़ा सुंदर रूप है जगन्नाथ जी का, विशेष रूप है, विशेष विशेष मतलब विचित्र है, विचित्र रूप है। अगर कोई व्यक्ति सीधा साधा व्यवहार नहीं करता उसको बोलते विचित्र है। तो कोई व्यक्ति कहा कि एक बार प्रवचन दे रहा था जगन्नाथ जी के बारे में, तो मैंने कहा ये भगवान का विचित्र रूप है कहा। तो एक व्यक्ति गुस्से में कहा कि आप भगवान को विचित्र कैसे बोल सकते हो। तो मैंने कहा कि ऐसा कौन सा चीज है जो भगवान नहीं कर सकते। लगा हाँ सब कुछ कर सकते हैं, अगर भगवान सब कुछ कर सकते हैं क्या विचित्र नहीं बन सकते क्या, है कि नहीं। वो खुद सिद्धांत कहता है, ये व्यक्ति नहीं कहा मुझे कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, नी कैन डू एनीथिंग, क्या वो विचित्र रूप धारण नहीं कर सकते। तो विचित्र मतलब क्या है, वी मतलब विशेष रूपेण, चित्र चित्र मतलब सुंदर, विशेष रूप में सुंदर है। विशेष रूप में जो सुंदर है उस व्यक्ति का, उस विशेष सुंदरता का पहचान विशेष व्यक्ति कर सकता है। स्पेशल फॉर्म स्पेशल ब्यूटी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय स्पेशल पर्सन। इसलिए साधारण लोग जाएंगे जगन्नाथ जी को देख के आ जाएंगे, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए तो उन्होंने कैसे दर्शन किया जगन्नाथ जी का, श्याम सुंदर रूप में दर्शन किया। वैसे चैतन्य महाप्रभु जब गए अलरनाथ तो तुरंत अलरनाथ जी का ऐसा हालत हो गया कि नहीं दो भुज नहीं जल, चार भुज नहीं दो भुज आएगा। जैसे कृष्ण जब दर्शन करने के लिए पूछते कृष्ण से पूछने के लिए आए थे, ऐसे वासुदेव से पूछने के लिए आए थे, राधा रानी जैसे आई तुरंत उनका दो भुज गायब हो गया। तो इसलिए भगवान का ये जो रूप है उसके पीछे जो सिद्धांत है वो जानना अति आवश्यक है। भगवान ऐसे ऐसे रूपों को धारण करते हैं किस जिसके द्वारा भक्तों का इंद्रियां प्रसन्न हो, खास करके उनके आंख प्रसन्न हो और उनका हृदय में जो भावना है जिस प्रकार का रस है उसी पर भगवान अपने भक्तों को अपना रूप प्रकाशित करते हैं। He reveals that form by which the devotees are completely satisfied. Rupam priyatam swanam sandrendriya gunanjanam. तो इसलिए जगन्नाथ जी का ऐसा रूप हुआ। He accepted this form of hati vesh. तो आज जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है ज्येष्ठ पूर्णिमा। तो जब भी प्राकट्य होता है तो प्राकट्य के पीछे कारण जानना आवश्यक होता है। Why the Lord manifests in this form? एक ऐसे गुह्य एक कारण है जगन्नाथ जी के प्राकट्य के पीछे, वो पहले हम चर्चा करेंगे, वो हमारे लिए बहुत प्रिय है। वाई जगन्नाथ जी अपीयर्ड। तो आप सब जानते हो जगन्नाथपुरी धाम ये चार बहुत महत्वपूर्ण धामों में एक है। जैसे लोग बोलते हैं चार धाम, वैसे तो चार धाम तो आजकल कुछ भी हो जाता है। चार धाम मतलब ओरिजिनली चार थे, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम। ऐसा माना जाता है कि भगवान बद्रीनाथ में वो उठते हैं और नहा धोते हैं और द्वारका में आके अपना वस्त्र धारण करते हैं और जगन्नाथपुरी में आके वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोग ग्रहण करते हैं और जाके सीधा रामेश्वर में सो जाते हैं। तो इसलिए जहां जहां जिस प्रकार की भगवान ने कार्य किया, भक्त लोग उधर जाके करते हैं तो वो उनका भक्ति है। जैसे कोई बद्री जाता है, उधर जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठ के उधर अलकनंदा में गंगा में नहाता है तो उसका भक्ति है। बड़ा मुश्किल है, देखो उधर सुबह वो जल्दी उठना, इतना ठंड, वो भी जाके उधर नहाना बहुत मुश्किल है। और द्वारका में आके वो भगवान का बहुत सुंदर तरह श्रृंगार करता है, अपने आप को भी सुंदर सजा के भगवान का यश बढ़ाता है, तो ये भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आजकल लोगों के पास धोती कुर्ता खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो बाकी बड़ा बड़ा श्रृंगार क्या करना, नहीं हो पाएगा। और जगन्नाथपुरी में क्या है, आके केवल प्रसाद ग्रहण करने से भक्ति हो जाता है, रामेश्वर में जाके सोने से भक्ति हो जाता है। अगर आपको दो चीज दिया जाए, सोना या खाना, कौन सा अच्छा लगता है? दोनों में देखना पड़ेगा क्या है। अगर खाओगे नहीं तो सोना भी नहीं आएगा, नींद भी नहीं आएगा। जैसे निर्जल एकादशी की है ना, उस दिन दिन भर निकल जाता है लेकिन रात को सोना नहीं होता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट भक्ति है प्रसाद ग्रहण करना कलयुग के। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए, ही मैनिफेस्टेड जस्ट फॉर दिस रीजन टू गिव प्रसाद टू एवरीबॉडी। ये कारण बताता हूं। एक बार ऐसा हुआ, नारद जी गए वैकुंठ में। वैकुंठ में जाके नारद जी हमेशा जब भी जाते हैं लोगों को भक्ति प्रदान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ टेढ़ा पंथी रहता उधर, सीधा कुछ नहीं काम करेंगे। नारद जी को मालूम पड़ा कि भगवान नारायण ने क्या किया, लक्ष्मी जी को आदेश दिया कि मेरा जो उच्चिष्ट है वो किसी को मत देना, तुम ले सकती हो बस किसी को मत देना। नारद जी ने सोचा कि ऐसा हो गया क्या भगवान, सीधा काम उनको। अभी ये क्या, भगवान से अगर पति से काम निकालना पड़ता है तो पत्नी के पास जाना पड़ता है कि नहीं, उनको प्रसन्न कर दो तो कैसे भी करके निकाल कर देगी। तो सीधा गए लक्ष्मी जी के पास। तो लक्ष्मी जी आश्चर्य हो गए, अरे आप तो हमेशा पति के पास जाते हो, अभी मेरे पास कैसे आए? तो उन्होंने कहा, देखो ऐसा है कि आपके पति जो है बहुत कठोर हृदय वाले हैं और आप तो बड़े कोमल हैं, उनको गुणगान किया। तो लक्ष्मी जी बड़ा प्रसन्न हो गया, हाँ देखो वाह वंडरफुल। तो हे नारद मुनि बोलो क्या वरदान चाहिए, जो चाहे वो दूंगी। तो नारद मुनि ने कहा, बस एक ही वरदान है कि मैं बहुत भूखा हूं, मुझे नारायण का उच्चिष्ट चाहिए, यानी उनका महाप्रसाद चाहिए। लक्ष्मी जी बड़े योगे, अरे कुछ ही दिन पहले तो उन्होंने कहा मुझे ये किसी को मत देना उच्चिष्ट। तब नारद मुनि ने कहा कि लक्ष्मी जी आपने तो वादा किया था जो चाहे वो देंगे, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे चाहिए तो यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं तो सन्यासी, मुझे क्या चाहिए। तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि ठीक है मैं आज जाती हूँ। तो बेस्ट टाइम अगर काम निकालने का टाइम होता है पत्नियों के लिए, क्या करते हैं, बड़ा सुंदर कुकिंग करेंगे फर्स्ट क्लास और बैठाएंगे, बैठा के वो परोसेंगे। और कैसे परोसेंगे, एकदम गुस्से में परोसेंगे और दुखी होकर परोसेंगे, कभी गुस्सा कभी दुखी दिखाएंगे चेहरे पे। तो पति जो खा रहा है वो देखता है, क्या क्या प्रॉब्लम है, कुछ क्या तकलीफ है? हाँ तो वो बताएगी, क्या बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा, आप थोड़ी ना करने वाले हो। तो लक्ष्मी जी वही टेक्निक इस्तेमाल किया। तो नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी तुम्हारा चेहरा इतना खिन्न क्यों है, इतना सुंदर तो पकवान बताया बनाया लेकिन इतना दुखी क्यों हो, क्या कारण है? तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं क्या करूं, मैं तो वरदान दे चुकी हूं। तो नारायण ने कहा तुम्हारा वरदान समझ लो कि मेरे वरदान से बढ़कर है, क्या वरदान दिया जो तुम नहीं दे सकती हो? तुमने कहा कि नारद मुनि को मैंने वरदान दिया, मैं जो चाहे वो दे सकती हूँ, लेकिन आपने तो ये महाप्रसाद जो है वो अपने आप के लिए रख दिया और आप खाली मेरे लिए बोला, लेकिन नारद मुनि को आपका महाप्रसाद चाहिए। तो नारायण ने कहा ठीक है तुम्हारे लिए मैं आज के लिए कंसेशन दे सकता हूँ, तो आज जो है मैं बस थोड़ा सा मुंह ऐसा कर दूंगा, चुपचाप प्लेट निकाल देना, क्योंकि मेरा वचन भी सिद्ध होना चाहिए, तो तुम ये महाप्रसाद का प्लेट लेके चले जाओ और नारद मुनि को दे देना। उनको बोला आज के बाद नहीं, बस आज के दिन। तो लक्ष्मी जी तुरंत गए, महाप्रसाद दिया नारद मुनि को। नारद मुनि थोड़ा सा अपने मुंह में डाले तो एकदम भाव विभोर होके नृत्य करने लगे, गान करने लगे, नाचने लगे, भाव विभोर होके कीर्तन करने लगे, करते 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 कैलाश पहुंचे। जब कैलाश पहुंचे उधर शिवजी ने देखा, नारद मुनि आप रोज कीर्तन करते हो लेकिन ऐसा कीर्तन नहीं करते हो, आज कुछ क्या स्पेशलिटी है? नारद मुनि कहा ये बहुत स्पेशल स्पेशलिटी है, ये आप नहीं जानते हो, आज जाके तपस्या करते रहो, ध्यान करते रहो, हम कीर्तन करेंगे। तो शिवजी ने कहा एक स्पेशल चीज क्या बताओ? नारद मुनि ने कहा आज मुझे भगवान का महाप्रसाद मिला है। तो शिवजी ने कहा मुझे भी दो थोड़ा सा। नारद मुनि ने सब खत्म हो गया। तो शिवजी बहुत एकदम गुस्से में कहा नारद मुनि को, हाथ पकड़ लिया, देखो कुछ ना कुछ होगा। तो नारद मुनि का जो उंगली और नाखून के बीच में थोड़ा सा जगह रहता है ना, उधर एक छोटा सा चावल का दाना फंसा हुआ। तो शिवजी ने थोड़ा सा ग्रहण किया तो एकदम और भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे, एकदम ऐसा भाव से नृत्य करने लगे कि घर से वो आई, दुर्गा जी आई। दुर्गा जी आके पूछा क्या हो गया आप दोनों को, एकदम मदमत होकर नृत्य कर रहे हो? तो शिवजी ने कहा ये तो स्पेशल है। तो ऐसा कौन सा स्पेशल है कि मुझे मुझे दिए बिना आप ऐसा आनंद ले रहे हो? तो शिवजी ने कहा कि मुझे भगवान का महाप्रसाद मिला है। तो दुर्गा जी ने कहा अरे मुझे दिए बिना आप ले लिया? तो शिव जी ने कहा सब खत्म हो गया, जाओ तुमको नहीं मिलेगा। तो एकदम दुर्गा जी को गुस्सा आया, आप कैसे कह सकते हो कि मुझे दिए बिना आप प्रसाद दे? तो अगर प्रसाद बांटे बिना आओगे ना तो आपको पाप लगेगा, मैं कुछ कर दूंगी करके उन्होंने बहुत गुस्से से उन्हें तपस्या करने लगी। और सभी क्रोधित होने, सभी सभी लोग डर गए गुरु दुर्गा जी का क्रोध से, और सब लोग नारायण के पास भागे। तेजी की आइए दुर्गा जी बहुत क्रोधित है। तो दुर्गा जी कौन है? नारायण की बहन है। तो भगवान के बहन होने के नाते बहन क्रोधित है तो शांत करने के लिए भगवान आए। तो दुर्गा जी ने कहा देखो मेरे पति ने आपका जो उच्चिष्ट है आपका महाप्रसाद मुझे दिए बिना उन्होंने खा लिया। तो भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, मैं जब जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हो जाऊंगा तब सबसे पहला मेरा महाप्रसाद तुमको ही मिलेगा। तो इसलिए आप जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे, जो जगन्नाथ जी का मुख्य मंदिर है ना, उसके एकदम पीछे ही उसी के प्रांगण में विमला जी का मंदिर है। बड़ा विमला जी दुर्गा जी का एक रूप है, दुर्गा का और एक नाम है, और बहुत गहरा संबंध है विमला जी और जगन्नाथ जी के। केवल महाप्रसाद ही सबसे पहला विमला को नहीं मिलता है, बल्कि ये जगन्नाथ जी जब प्रकट होते हैं या उनका नव कलेवर होता है या कोई भी कुछ भी समस्या होता है, उनका जो हल है उसका समाधान विमला जी देती है। उधर के जो पंडे हैं उनको समझ में नहीं आते क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है मंदिर में, वो फास्ट करते हैं, फास्टिंग मतलब वो उपवास करते हैं, और जब 8-10 दिन विमला जी से प्रार्थना करते हैं, विमला जी के भजन करते हैं, हे विमला जी आपकी कृपा के बिना जगन्नाथ जी कैसे प्राप्त होंगे, ऐसे बहुत सारे भजन करते हैं। तब विमला जी सपने में आके कहती है कि यह देखो अभी जगन्नाथ जी का ये तकलीफ है, आप ऐसा करो। इतना ही नहीं, विमला जी जब नव कलेवर होता है, नव कलेवर मतलब जगन्नाथ जी का जो शरीर है वो हर 12-14 साल कभी 20 साल में कभी उसका परिवर्तन होता है। उस नव कलेवर के बारे में कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि उनका शरीर जो है रोज चंदन लागी सेवा होता है, 7 बार जगन्नाथ जी को चंदन लगाते हैं, वो विंटर में भी लगाते हैं चंदन पूरा। तो जगन्नाथ जी का रोज चंदन लगाना है, चंदन का पानी जो अंदर जाके उनका शरीर जो है बड़ा कमजोर जाता है, इसलिए जगन्नाथ जी का पूरा जो शरीर है वो चेंज करते हैं, विग्रह को पूरा चेंज करते हैं। तो वो टाइम में जो नया विग्रह को बनाना है, तो नया विग्रह को बनाने के लिए कहीं जाना होगा, कहीं कहाँ से बनाएंगे, कौन सा पेड़ को चुनेंगे? तो विमला जी आदेश देती है आप जाओ ये डायरेक्शन में जाओ। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि विमला जी आवेशित हो जाते हैं उस पंडे में, और पंडे लोग भागते हैं, कभी कभी 4-5 घंटा भागते, कभी 4-5 दिन तक भागते रहते, तब जाके एक जगह जाके बेहोश हो जाते, एक पेड़ के नीचे जाके। तो नीम का बड़ा पेड़ रहेगा उसके नीचे जाके बेहोश हो जाते हैं, यानी उस उधर जगन्नाथ जी प्रकट हो रहे या बलदेव जी प्रकट हो रहे या सुभद्रा जी प्रकट हो रहे, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये बड़ा गहरा संबंध है। तो भगवान ने कहा दुर्गा जी को कि मैं अपने आपको मैं अपने प्रांगण में रखूंगा और शिव जी को मंदिर से बाहर निकालूंगा। इसलिए शिव जी का मंदिर जो है बाहर है, और मूल जो है जो शिव जी का उधर क्षेत्र है वो भुवनेश्वर है। तो पुरी कहाँ है? जगन्नाथपुरी भुवनेश्वर दो उनके बीच में कम से कम 50-60 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन विमला जी को अपने पास रखा। था पति ने तुमको देखभाल नहीं किया, ठीक है मेरे पास आ जाओ मैं देखभाल करूंगा। ऐसा जगन्नाथ जी ने केवल सारे जगत को हाँ, खास करके विमला जी को महाप्रसाद ग्रहण करने के वो देने के लिए वो प्रकट हुए। तब दुर्गा जी ने कहा कि मैं शिव जी अपने पति जैसा नहीं हूं, मैं स्वीकार करूंगी आपके महाप्रसाद को, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे जितने भी पुत्र है, यानी सारे जितने भी जीव है, सबको मिलना चाहिए। तो तब भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, मैं जगन्नाथ जी के रूप में खास करके केवल एक ही कारण के लिए प्रकट होता हूं, मुख्य कारण यह है कि सारा जगत को मेरा महाप्रसाद मिले। तो इसलिए जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का महिमा जो है ये अनेकों शास्त्रों में किया गया है। उधर के पंडे के साथ मैं चर्चा कर रहा था, उन्होंने कहा लोग बोलते हैं महाप्रसाद महाप्रसाद महाप्रसाद, लेकिन महाप्रसाद केवल जगन्नाथपुरी मिलता है, बाकी सब जगह केवल प्रसाद मिलता है। उनका ऐसा भाव है, पता नहीं क्या डिफरेंस है, लेकिन उनका कहना यह है महाप्रसाद मतलब जगन्नाथपुरी। मैंने बोला क्यों? क्योंकि ये जगन्नाथपुरी में हम एकादश भी नहीं करते। बोलेंगे अरे ऐसा कैसे, ये सही बात है। उधर एक छोटा सा मंदिर है, एकादशी मंदिर है, उधर एकादशी का जो विग्रह है, यानी एकादशी का जो कंट्रोलिंग डेटी है, उनका जो आदिष्टात देवी है, एकादशी देवी है, उनका हाथ पैर बांध के उधर रख दिए, आप इधर आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए जगन्नाथपुरी के पंडे कभी एकादशी नहीं करते। ऐसा नहीं कि हम लोग जाएंगे तो हम करेंगे। मैं एक बार पूछा पंडे से कि आप एकादशी क्यों नहीं करते हो, तो पंडे ने कहा कि जगन्नाथ जी का महिमा नहीं जानते हो आप। मतलब जानता हूँ, बड़ा पवित्र है। तो ने कहा कि अगर इतना महान है भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद, हम एक दिन के लिए भी क्यों वंचित रहे उससे? Why I should be deprived of even जगन्नाथ प्रसाद even for one day? तो ऐसा उनका भाव है। तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का वर्णन ऐसा हुआ है शास्त्रों में, अगर कोई व्यक्ति कोई कुत्ता भी है उसको कार लिखा लेता है और खाते खाते उनके मुंह से कुछ गिर जाता है, एक ब्राह्मण भी उसको लेके ग्रहण करेगा तो ये कभी भी अपवित्र नहीं होता है। ऐसा एक बार हुआ, चैतन्य महाप्रभु एकदम सुबह सुबह पहुंच गए सारमठाचार्य के घर में और जाके जगन्नाथ प्रसाद दिए हाथ में, और जगन्नाथ सारमठाचार्य उसी टाइम उठे थे, जस्ट तभी बिस्तर से उठे थे, उठ के दरवाजा खोले थे, चैतन्य महाप्रभु सामने, महाप्रसाद उनके सामने है। तो जैसे महाप्रसाद मिला तुरंत सारमठाचार्य ने उनको स्वीकार किया। महाप्रभु ने बहुत इसको देखे बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि अगर ब्राह्मण को खास करके कोई भी चीज ग्रहण करना खाना होता है, सबसे पहला उनको उठ के मुंह हाथ धो के नहा धो के पूरा पूजा सारे करना सब कुछ का, उनका पूरा सुबह का जो क्रिया करने के बाद वो ग्रहण कर सकता है, लेकिन सारमठाचार्य ये सब कोई विधि नियम देखा नहीं, सीधा उन्होंने महाप्रसाद को ग्रहण किया। ये देखे अति प्रसन्न हो गए चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए जगन्नाथ प्रसाद जो है वो दिव्य है और ये लोगों को उद्धार करने के लिए सारे, क्योंकि इस भौतिक जगत में खास करके कलयुग में लोगों का मन जो है हमेशा अन्न में रहता है, अन्नगत प्राण। वो लोग सोचेंगे अब बोलेंगे हरे कृष्ण मांस जप करो, अरे भूखे पेट भजन थोड़ी ना होगा, अभी खा के आया होगा, पूरा पेट भरा होगा, लेकिन फिर भी ये बात बोलेगा भूखे पेट भजन थोड़ी ना होगा। यानी भजन नहीं करने का कारण क्या बताएंगे? भूखा पेट। यानी भजन करूंगा तो क्या होगा? मैं काम क्या करूंगा? काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या? हमेशा खाने के पीछे पड़े रहते हैं, हमेशा खाने के पीछे पड़े रहते हैं, खाने को दो खाने को दो। तो भगवान को ये मालूम है कि हमेशा लोग खाने के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है, मैं उसी के अंदर आध्यात्मिक तत्व को भर के बदलू। आई जस्ट गिव कृष्ण कॉन्शियसनेस थ्रू अन्न ओनली। इसलिए प्रभुपाद जी बड़ा इतने महान आचार्य है, जब वो अमेरिका गए सबसे पहले कौन सा विग्रह को प्रकाशित किया उधर? जगन्नाथ जी। आप सबको मालूम है एक बार प्रभुपाद जी वो अमेरिका में थे, वो टाइम में मालती माता जी शी वेंट आई सपोज, वो गई एक इंडियन स्टोर, पुराना जो स्टोर मिल उससे मिलता है उधर गई, भारतीय आइटम्स मिलता है ऐसे, जाके उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा गुड़िया दिखाई पड़ा उनको, खरीद के लाई, चोरी करके लाई सकते हैं, खरीद के नहीं चोरी करके शिव। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को दिया, प्रभुपाद जी देखिए मैं इधर इंडियन स्टोर से खरीद के लाई हूँ। तो प्रभुपाद जी जैसे उनको देखे तुरंत उसको लिए और टेबल के ऊपर रखे और प्रणाम किए, उन्होंने कहा थे तो जगन्नाथ जी है। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार देखे और बड़े वियोगी पूछा कि कौन है ये? कृष्ण का एक रूप है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इनके साथ और दो थे, उनको भी लेके आओ। तो तुरंत गई और दो लोगों को लेके आई, तो तुरंत प्रभुपाद जी ने अल्टर सेटअप किया। अब देखिए पूरा इस्कॉन में सबसे पहला अगर विग्रह का स्थापना किसी का हुआ है तो किसका हुआ है? जगन्नाथ जी का हुआ है। उस समय से सब लोग जो है जगन्नाथ जी को भोग लगा देते। प्रभुपाद जी ने कहा कि आज से जो भी खाओगे पहले उनको भोग लगा के खाओ। तो वो लोगों ने कहा भोग कैसे लगाएंगे? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप जो भी पकाना है पकाओ, पका के उनको प्लेट रखो, और वो टाइम उनके पास तुलसी भी नहीं होगा लगता है, रखो, रख के अब क्या करो आप हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करो बस। हाँ, तीन बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो तो जगन्नाथ जी ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे करने लगे, शुरुआत में भोग ऐसे शुरू हुआ। हम लोग पूरा विधि के साथ भोग लगाना करते हैं, लेकिन जो सबसे पहला जो विग्रह का जो प्राकट्य है इस्कॉन में जगन्नाथ जी का हुआ, और सबसे पहला जगन्नाथ जी का प्रसाद से ही शुरू हुआ। वो ग्रहण करते करते सब लोग शुद्ध हो गए। इसलिए ये जगन्नाथ जी का जो विग्रह है, ये इनका प्राकट्य के पीछे अति महत्वपूर्ण कारण यही है कि सारे जगत को वो महाप्रसाद वितरण करना चाहते, वांट्स टू गिव महाप्रसाद टू एवरीबॉडी। ये एक कारण हुआ जगन्नाथ जी का प्राकट्य के पीछे। और एक कारण है, और एक महत्वपूर्ण कारण है। ये कारण तो बड़ा प्रसिद्ध कारण है, हर साल आप सुनते हो, लेकिन फिर भी आपको वापस सुनाएंगे, क्योंकि ये तो सुनना ही चाहिए। जितना हम सुनेंगे उतना आस्वादन होगा। तो आप सबको मालूम है भगवान द्वारका में अनेक लीलाएं कर रहे थे, तो उनके 16108 रानियां, ये सब लोग एक बार रोहिणी माता के पास आए, आके कहने लगे, हे रोहिणी माता बताओ, आप ही बता सकते हो, ऐसा लगता है कि हम बहुत प्रसन्न करना चाहते हैं अपने अपने पति को कृष्ण को, लेकिन जितना ही प्रसन्न करना चाहते हैं ऐसा लगता है कि हमसे वो संतुष्ट नहीं है। हम उनको बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन खिलाते हैं, उनका इतना अच्छी तरीके से सेवा करते हैं, लेकिन उनका हमेशा उनका मन जो है कहीं खोया हुआ रहता है। कभी कभी अकेले में बैठ के बात करते रहते हैं, कभी कभी गोपी गोपी करके चिल्लाते हैं, क्या है ये, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो रोहिणी माता ने कहा कि इसका विषय तो मैं जानती हूँ। तब सब लोगों ने कहा कि बताइए। तो रोहिणी माता ने कहा कि अगर मैं बताऊंगी, कृष्ण को मालूम पड़ा, सुनाई पड़ा, तो वो इधर से भाग जाएंगे। आप चाहते हो इधर से भाग जाए कृष्ण? तो नहीं नहीं नहीं, हम एक बंद कमरे में करेंगे, और दरवाजे के पास आपको खड़ा करना पड़ेगा सुभद्रा जी को। ये बड़ा सीक्रेट चीज है। क्यों सीक्रेट है? क्योंकि अगर ये बात अगर किसी को मालूम पड़ा, खास कर कृष्ण को मालूम पड़ा, तो वो वृंदावन भाग जाएंगे। तो सारे रानियों ने कहा ठीक है, कमरे में बंद हो गए, और रोहिणी माता ने शुरू किया, हे द्वारका के पत्नियों आप सुनो कि कृष्ण जो है उनके लिए अत्यंत प्रिय कौन है? ब्रजवासी है, उनसे प्रिय और कोई है ही नहीं। बाकी सब लोगों से सेवा तो ग्रहण करते हैं, लेकिन एक औपचारिकता का मात्र है। तब वो लोगों ने पूछना है वो लोग कौन है, हम जानना चाहते हैं, वो कैसे सेवा करते थे, हम भी ऐसे करने के लिए प्रयास करें, उनके बारे में जरा सुनाइए। तो कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में वो रोहिणी माता श्रवण कराने लगी, और सारे जितने भी रानियां हैं वो श्रवण करने लगी। तब कृष्ण और बलराम देखने लगे, कहाँ गए? महल में आके देखते हैं कि सारे महल खाली है। तो एक जगह उनको बड़ा सभागृह दिखाई पड़ा, उधर ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है, मीटिंग हो रहा है। तो लोग सोचने लगे क्या मीटिंग हो रहा है, जरा सा दरवाजे के अंदर जाने के लिए प्रयास किया, तो सुभद्रा ने कहा नहीं अब अंदर नहीं आ जा सकते हो। तब कृष्ण ने कहा ठीक है, अंदर नहीं जा सकते तो खिड़की से देख सकते हैं ना। तो सुभद्रा ने ठीक है, खिड़की के पास गए, सुभद्रा में बीच में थी, और उनके राइट साइड में बलदेव जी बलराम जी है, और लेफ्ट साइड में कृष्ण खड़े रहे सुभद्रा के जैसे यही रूप में। और सब लोग सुनने लगे, रोहिणी माता बोलने लगी किस प्रकार भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ मथुरा में, उधर से कैसे गोकुल आए, गोकुल में अनेक प्रकार के बाल लीलाओं में मक्खन चोरी की लीलाओं किया, धाम मंदिर लीला का वर्णन किया, करते करते वो कैसे वो वृंदावन आए, गोवर्धन में अनेकों लीला किया, गोवर्धन धारण करने की लीला और रास लीला, और चर्चा करते करते कृष्ण को अपने व्रजवासियों का स्मरण होने लगा। उसी प्रकार बलराम जी सुभद्रा में अपने व्रज प्रेमी भक्तों का जैसे उनका स्मरण हुआ, उनके अंदर महाभाव प्रकाश प्रकट हुआ। ये महाभाव प्रकाश जो है, ये महाभाव केवल राधा रानी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनके एकदम निकटतम पार्षद जैसे सुब्रमण्य है, बलदेव जी है, वही लोग उसको अनुभव कर सकते हैं। तो ये महाभाव प्रकाश जैसे प्रकट हुआ तो उनका हाथ जो है इधर अंदर चले गए, पैर भी अंदर चला गया और उनका आंख एकदम बड़े हो गए। क्योंकि अगर आप भी जब कोई बड़ा खुशखबरी सुनते हो तुरंत हाथ क्या होता है, हाथ अंदर चले जाता है कि अगर आप कोई एक्साइटिंग और अद्भुत बात सुनते हो या देखते हो तुरंत आंख बड़ा करके देखते हो। जब कोई टीवी देखता हो उसके अंदर कोई बड़ा अद्भुत सा चीज ऐसा आंख बड़ा करता है कि तब देखिए अब हमारा आंख कितना बड़ा हो सकता है तो भगवान का आंख कितना बड़ा होगा। तो भगवान का आंख इतना बड़ा हो गया और हाथ एकदम अंदर चले गए तो और इस प्रकार जगन्नाथ जी का रूप धारण किया। उसी समय नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि प्रकट होके ये अद्भुत सा रूप को देखे, उन्होंने रूप को देख के उन्हें कहा हे भगवान इतना अद्भुत रूप ने आज तक आपने प्रकाशित नहीं किया है, मैं चाहता हूं कि आप इस रूप में हमेशा मेरे हृदय में बसे रहो और इस रूप को आप सारा जगत में दर्शन दो। तो भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, मैं एक भक्त का सहारा लूंगा, मैं एक भक्त का सहारा लेते हुए मैं प्रकट होऊंगा और जगन्नाथ जी के रूप में सब लोगों को मैं कल्याण करूंगा। और जैसे ये जो रूप का हमने कहानी सुना है, लेकिन ये जगन्नाथ जी का ये जो रूप है उसके पीछे तत्व को भी जानना होगा, क्योंकि अगर तत्व नहीं जाएंगे तो दर्शन करना जो है एक्सरसाइज मात्र है, भाव प्रकट नहीं होगा। इसलिए तत्व जाने बिना जो व्यक्ति कथा सुनता है तो उसके हृदय में भाव जागृत नहीं होता है। भाव जागृत होने के लिए तत्व जानना अति आवश्यक है। भगवता में भगवान कहते हैं हम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। ये भाव समन्विताः भाव का प्रकट होता है जब वो व्यक्ति ये तत्व जानता है। क्या तत्व जानता है? अहम सर्वस्य प्रभुः, हर चीज मेरे से उत्पन्न होता है। अहम सर्वस्य प्रभुः मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा, बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ये तत्व को जानता है। ये जो जगन्नाथ जी का तत्व है बड़ा गुह्य है। द्वारका में भगवान जो है उनके हाथ में बांसुरी है, जे कि आपका राजा कोई बांसुरी बजाता है तो कैसा राजा है? बांसुरी कोई बजाता है तो सुनता है तो अलग बात है, वो राजा है, लेकिन बांसुरी बजाने वाला राजा थोड़ी ना। तो भगवान जो है वो त्रिभंग ललित है द्वारका में, नहीं वो सीधे खड़े होते हैं, टेढ़ा खड़ा हो गया तो लोग सोचेंगे क्या है टेढ़ा खड़ा होता है। जो श्याम सुंदर कृष्ण के जो लक्षण है वो द्वारका कृष्ण में प्राप्त नहीं होते थे, टेढ़े देखना। हमेशा वृंदावन में भगवान जो है सीधा कभी नहीं देखते हो, ऐसे टेढ़े देखते रहते देखते रहते, लेकिन द्वारका में उनको सीधा देखना पड़ता है। और ये भी नहीं, द्वारका में भगवान जो है मुकुट धारण करते हैं, जैसे आज कौन सा है भगवान मुकुट धारण किया ना, तो ये द्वारका क्या है। वैसे जब गिरधारी प्रभु ड्रेसिंग करते हैं तो वृंदावन का कृष्ण बना देते हैं उनको पगड़ी, वो मुकुट कभी धारण नहीं करते। वृंदावन में कई भगवान मुकुट नहीं धारण करते, केवल पगड़ी धारण करते, वनमाला धारण करते हैं। तो ये द्वारका कृष्ण जो है वो ऐश्वर्य स्वरूप है और वृंदावन में कौन है, माधुरी स्वरूप कृष्ण है। ये मधुरता जो है वो ऐश्वर्य को ढक देता है वृंदावन में, लेकिन वही द्वारका में यह ऐश्वर्य जो है मधुरता को ढककर ढक देता है। लेकिन ये जगन्नाथ जी का स्पेशल रूप है। जगन्नाथ जी कौन है? द्वारका के कृष्ण हैं, लेकिन बाहरी बार हैं। बहिरंगिक रूप में द्वारका के कृष्ण हैं, ऐश्वर्य स्वरूप कृष्ण हैं, लेकिन उन्होंने क्या भी श्रवण किया, किसका श्रवण किया? अपने माधुरी भक्तों का, लीलाओं का श्रवण किया। ये ऐसे रूप है भगवान का, जब वो अपने ही कथा को सुन के आकृष्ट हो गए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए, तो कृष्ण कथा श्रवण हम जितना आतुरता से, भक्त लोग जितना आतुरता से श्रवण करना चाहते हैं, भगवान भी उतना ही आतुरता से श्रवण करना चाहते हैं। तो एक बार एक क्लास चल रहा था, भागवत कथा चल रहा था, उसमें बहुत सारे लोग सो रहे थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा जो वक्ता को, कि सब लोग सो रहे थे, आप कैसे बोल पा रहे हो इतना उत्साह के साथ? तो बाल भले ही सब लोग सो जाए लेकिन भगवान तो सुनते हैं क्योंकि ये स्वभाव है कि मान लो किसी के बारे में चर्चा हो रहा है, सुना नहीं सुना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई आपके बारे में कुछ भी चर्चा करते है, थोड़ा सा हल्का सा भी, वह क्या कहा था मेरे बारे में बताओ ये जो प्रवृत्ति है कहां से आया? भगवान में है तभी आया ना। तो वैसे ही है जैसे कोई चाहता है कृष्ण है, कृष्ण थोड़ा सा बात निकला तो कृष्ण आके सुनते हैं क्या बोल रहे हैं व्हाट इज ही टॉकिंग, भले गलत ही सही चर्चा तो करो इसलिए जब नास्तिक लोग ये बात कहते हैं कि कृष्ण नहीं है तो कृष्ण बड़ा प्रसन्न होते हैं, अच्छा ठीक है मैं नहीं हूं, कम से कम मेरे बारे तो चर्चा हो रहा है ऐसा कहावत है ना कि लव मी और हेट मी, डोंट फॉरगेट मी, नो नेग्लेक्ट मी, आप मुझसे प्रेम करो या नफरत करो लेकिन चर्चा तो करो मेरे बारे में। तो भगवान का यश ऐसा है कि मान लो कोई यशस्वी व्यक्ति है तो जो लोग उनको मान देते सम्मान देते या जो उनको मानते वही लोग चर्चा करेंगे, लेकिन भगवान ऐसे है भक्त लोग भी उनके बारे में चर्चा करेंगे और अभक्त और नास्तिक भी उनके बारे में चर्चा करेंगे। भक्त लोग चर्चा करेंगे किस प्रकार भगवान सुंदर है, उनका रूप का वर्णन करेंगे, भगवान के अस्तित्व का चर्चा करेंगे, और अभक्त भगवान कैसे नहीं उसका चर्चा करेंगे, चर्चा किसका? भगवान का ही। तो जहां जहां कृष्ण कथा होता है तो कृष्ण तुरंत उधर भाग के आते, सुनते हैं क्या चर्चा हो रहा है, बड़े वो बराबर बोलता भी क्यों ना हो। एक जगह एक व्यक्ति ने कहा कि कृष्ण लीला चर्चा किया आपने, एक लीला वर्णन किया लेकिन एक गलत वर्णन किया, ऐसा ऐसा नहीं, इस प्रकार वर्णन होना चाहिए, ऐसा नहीं किया था कृष्ण ने। तो वक्ता ने कहा ठीक है ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि कृष्ण क्या ऐसा नहीं कर सकते क्या? यू कैन नॉट टेल लाइक दैट, कृष्ण कैन डू इट, ही कैन डू एनीथिंग, ये बात को ध्यान में रखना, जो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस रूप में जगन्नाथ जी के रूप में ये ऐसा भगवान का रूप है जिसने जिसमें उन्होंने अपना ही कथा सुनने का उत्सुकता और आतुरता को प्रकाशित किया। कृष्ण वांट्स टू हिज ओन लिसन टू हिज ओन कथा, कृष्ण कथा श्रवण कर। तो ये द्वारका के कृष्ण ही इज हैविंग ऐश्वर्य स्वरूप, बार ऐश्वर्य का रूप है, जैसे आप देखते हो जगन्नाथ जी का बड़ा ऐश्वर्यवान रूप है, लेकिन हृदय में क्या है, अंदर क्या है, वो माधुर्य भक्तों का स्मरण हो रहा है, अंदर मधुरता बाहर ऐश्वर्य, ये जगन्नाथ जी का तत्व है। इनसाइड स्वीटनेस, आउटसाइड ऐश्वर्य, आउटसाइड बाहर क्या है, ऐश्वर्य है, अंदर माधुर्य है, इसको जगन्नाथ जी कहते हैं। वो कृष्ण जिसके अंदर बाहर ऐश्वर्यवान स्वरूप है और अंदर माधुर्य है, वो जगन्नाथ जी है। दूसरे शब्दों में कहा जाए द्वारका और वृंदावन का जहां मिलन होता है वो जगन्नाथपुरी है, क्योंकि द्वारका का कृष्ण है इसलिए द्वारका है जगन्नाथपुरी में, लेकिन भाव कहां का है, वृंदावन का है, इसलिए जो व्यक्ति जगन्नाथपुरी जाता है तो द्वारका वृंदावन दोनों चला गया, दोनों गया समझ लीजिए, यानी जगन्नाथ जी का दर्शन करने से द्वारका कृष्ण का दर्शन हो गया और वृंदावन कृष्ण का भी दर्शन हो गया, ये दोनों हो गया। लेकिन जगन्नाथपुरी केवल द्वारका और वृंदावन का ही मिश्रित जगह नहीं है, उधर कौन पहुंचे, ये सारा तत्व को प्रकाशित करने वाला कौन है, चैतन्य महाप्रभु है, और चैतन्य महाप्रभु कहाँ के हैं, नवद्वीप के हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जहां है उधर नवद्वीप है, तो इसलिए जगन्नाथपुरी धाम का क्या है, वो त्रिवेणी संगम है, तीनों धाम का संगम है, द्वारका वृंदावन और मायापुर, जहां द्वारका वृंदावन मायापुर का संगम होता है वो जगन्नाथपुरी है। लोग इस सत्य को नहीं जानते हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु 18 साल जगन्नाथपुरी में निवास किया, और मायापुर में जब थे वो पंडित के रूप में, निमाय पंडित के रूप में घूम रहे थे इधर उधर, सब लोग इंतजार करते कब भक्त बनेगा, ऐसे तो भक्त है ही कृष्ण है, लेकिन फिर भी इंतजार करते कब भक्त का प्रकाश लीला को प्रकाशित करेंगे। और उन्होंने क्या किया, हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु का आप जाओ जाके प्रचार करो, और जब उन्होंने संकीर्तन में निकाला बाहर तो उन्होंने क्या किया, बहुत जबरदस्ती करके बड़ा आंदोलन के रूप में निकाला, एक दैनी भावना से आप भिक्षा मांगते हुए आप सब लोग जाओ हरि नाम उच्चारण करो, ऐसा उन्होंने नहीं किया नवद्वीप में। कीर्तन भी किया, 24 घंटे पूरा रात भर उन्होंने कीर्तन किया, तो एकदम निकटतम संगियों में किया। जिस कारण के लिए चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, क्या कारण था? सारा जगत को हरिनाम देना, कृष्ण प्रेम देना, वो कारण नवद्वीप में संभव नहीं था, हो नहीं पाया या किया नहीं। चैतन्य महाप्रभु जब आए कहां, जगन्नाथपुरी में, और खास करके आखिरी 18 सालों में उनका दिनचर्या और रातचर्या का वर्णन हुआ है आखिरी खंड में, यानी अंत लीला में, कि दिन भर चैतन्य महाप्रभु हर जगह घूम घूम के सब लोगों को हरिनाम प्रचार कर रहे थे, एकदम मद मत होते सबके बीच में नाच रहे थे। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में कौन कौन आ गया, हजारों लाखों लोगों के बीच में चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते सबको हरिनाम प्रदान कर रहे थे। उन्होंने जो प्राकृतिक का जो मुख्य उद्देश्य है सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करना, उन्होंने वो किया जगन्नाथपुरी में। और रात भर क्या करते थे चैतन्य महाप्रभु, वो कृष्ण विरह में, राधारानी के भाव में वो केवल रोते थे, वॉज कॉन्स्टेंटली क्राइंग। यानी कृष्ण प्रेम के सर्वोच्च लक्षण को जगन्नाथपुरी में प्रकाशित किया, और साथ साथ में हर जगह सब पब्लिक के सामने सबको कृष्ण प्रेम प्रदान किया है। ये दोनों कार्य अस्तित्व में चैतन्य महाप्रभु का अगर लीलाओं को श्रवण करना है, नवद्वीप के लीलाएं, अनेकों अलग अलग जगह की लीलाएं, लेकिन आखिरी जो 18 साल जहां जगन्नाथपुरी उन्होंने लीलाओं को संपन्न किया, वो लीला जो है सबसे टॉप मोस्ट लीला है। हम एक ऐसे पढ़ते जाएंगे ऐसा लगता है कि क्या है ये प्रेम, क्या है कृष्ण प्रेम, क्या है चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में दिखाया, नवद्वीप में और दक्षिण भारत में दिखाया, दिखाया भी तो अंतरंगिक भक्तों को दिखाया, लेकिन पब्लिक में नहीं दिखाया, गायों को नहीं दिखाया। चैतन्य महाप्रभु जब एकदम कभी कभी ऐसा गंभीरा में निवास करते थे, वो टाइम में दरवाजा बंद है, अंदर दरवाजा खोल के देखते चैतन्य महाप्रभु एक दिन गायब, कहां गया किसी को नहीं मालूम। वो सब लोग ध्यान ढूंढने के लिए गए, एक जगह गाय जो है एकदम मदमत होते हुए आनंदित हो रहा था। वो क्या हो रहा था, गाय कहीं छाट रहा था, नजदीक जाके देखे एक ऐसा सोने का एक भोपला जैसा बड़ा शरीर पड़ा हुआ था, चैतन्य महाप्रभु का शरीर है। एकदम रात को जगन्नाथपुरी में जाए, गाय इधर जाके कुछ खाते रहते उधर कीचड़ में या जहाँ कूड़ा कचरा जला जाता है, उधर चैतन्य महाप्रभु पड़े हुए हैं कृष्ण विरह में, उनका पूरा शरीर जो है एकदम कभी छोटा हो जाता था कभी बड़ा हो जाता था, उनके जो हाथ के जो जॉइंट है एकदम 2-3 फुट दूर हो जाता था, इनके दोनों का जॉइंट ही खत्म हो जाता था, और उनके शरीर से पसीना और खून से उत्पन्न हुआ ये गूस पिंपल्स आते थे। ऐसे जो महाभाव के लक्षण जो है चैतन्य महाप्रभु ने पब्लिक ने प्रदर्शित किया नवद्वीप में केवल अंतरंगी भक्तों के बीच में, ये जगन्नाथपुरी धाम है। जहां नवद्वीप है चैतन्य महाप्रभु उपस्थिति की वजह से, जहां द्वारका है क्योंकि एक्सटर्नल वेशभूषा किसका है, ऐश्वर्य स्वरूप है, और अंतर अंदर ही क्या है, माधुरी स्वरूप है। इसलिए द्वारका, वृंदावन और नवद्वीप, ये तीनों धामों का मिश्रित स्वरूप धाम है जगन्नाथपुरी धाम। इसलिए भक्तों को जाना चाहिए जगन्नाथपुरी। 18 ईयर्स चैतन्य महाप्रभु, इसके पीछे और लंबा तत्व है, चैतन्य महाप्रभु 18 साल क्यों बिताए उधर, वाई स्टेड इन जगन्नाथपुरी, केवल यही कारण था, क्योंकि उधर कृष्ण क्या कर रहे हैं, द्वारका में निवास करते हुए अपनी जो प्रेमी भक्त वृंदावन, वो अपने प्रेमी भक्तों के विरह में वो रो रहे हैं। इसलिए जगन्नाथ जी का ये तत्व तत्विक नाम है राधा विरह विदुरा। बहुत सारे आचार्य ने इसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्री दिया है, तो ये उन्होंने स्पष्ट कहा है, अगर जगन्नाथ जी को संबोधित करना है तत्व के दृष्टिकोण से, टेक्निकल नेम ऑफ जगन्नाथ क्या है, वो राधा विरह विदुरा। जब कृष्ण द्वारका में ये सारे लीलाओं को श्रवण कर रहे थे, जैसे राधा रानी का नाम उनको स्मरण हुआ, तो तुरंत राधा रानी के विरह में कृष्ण की आंखों से आंसू टपक पड़ने लगे। जब ये कृष्ण जो है द्वारका के कृष्ण अपने माधुर्य भक्तों का विरह में जब रोते हैं, वो कृष्ण जगन्नाथ जी है, इज ए क्राइंग फॉर्म ऑफ कृष्ण। आप बोलते हो अरे भगवान रोते थोड़ी ना है, क्यों नहीं रोएंगे, ये जो रोना है ये माधुर्य भक्तों का स्मरण में जो विरह का जो आंसू है जब उनके आंखों से गिर पड़ते हैं, वो कृष्ण जो है वो जगन्नाथ जी है। और ये कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए कौन, चैतन्य महाप्रभु, कौन है वो? राधा। ये तो बड़ा विषय तत्व है, कभी और रथ यात्रा जब नजदीक और आएगा तो उस समय चर्चा करेंगे किस प्रकार उन दोनों का मिलन हुआ, और भी स्टोरीज बहुत सारे हैं। लेकिन अभी हमने चर्चा किया किस प्रकार जगन्नाथ जी प्रकट हुए, उनका कारण क्या है। दो कारण हमने चर्चा किया, एक तो उन्होंने वादा किया था विमला जी को, दुर्गा जी को, मैं आऊंगा और सारे जगत को महाप्रसाद दूंगा। और दूसरा कारण उन्होंने नारद मुनि को प्रॉमिस किया था, नारद मुनि को कहा कि मैं इसी रूप में प्रकट हो जाऊंगा आगे इंद्रदुम्न का सहारा लेते हुए। तो आपको ये इंद्रदुम्न का स्टोरी भी सुनाएंगे, क्योंकि आज के दिन ब्रह्मा जी ने ये विग्रहों को उन्होंने अभिषेक किया था, इसलिए आज भी हम अभिषेक करते हैं और इसको स्नान यात्रा के रूप में कहा जाता है। तो जगन्नाथ जी का ये प्राकट्य दिवस आज है, मतलब ब्रह्मा जी ने आज जगन्नाथ जी का प्रकाशित किया। ये जगन्नाथ जी का विग्रह जो है ये शाश्वत विग्रह है, एटर्नल डेटिस है। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को भगवान के अनेकों रूपों को वर्णन करते हुए जब उन्होंने ये वर्णन किया, नित्य नौ विग्रहों का वर्णन किया उन्होंने, नाइन एटर्नल डेटिस। जैसे भगवान मथुरा में केशव जी के रूप में निवास करते हैं, ही इज एटर्नली रिसाइडिंग एज केशव। और मायापुर में भगवान हरि के रूप में निवास करते हैं, और ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान जो है जगन्नाथ जी के रूप में नित्य निवास करते हैं। तो वैसे अनेकों क्षेत्र उधर नित्य विग्रह है, तो ये विग्रह का स्थापना ब्रह्मा जी ने कैसे किया उसका थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बात शुरू होता है, एक राजा थे जिसका नाम था इंद्रदुम्न। ये इंद्रदुम्न बड़ा सुंदर भक्त था भगवान का, और ये सत्युग का राजा। ये राजा भी कहाँ का था? अवंतीपुर का राजा था। अवंती मतलब अभी का उज्जैन जो है उसको अवंतीपुर कहा जाता है। ये उज्जैन का राजा है। तो उज्जैन का राजा हमेशा वो खिन्न रहते थे, राजकार्य में कोई रुचि नहीं रखते थे। तो उनकी पत्नी और उनके जो कमांडर इन चीफ है, जैसे सॉरी उनका जो मिनिस्टर है, उनका नाम है विद्यापति, ये दोनों गुंडीचा और विद्यापति एक दिन चर्चा कर रहे थे कि हमारे जो राजा है ऐसा क्यों है। तब विद्यापति ने पता किया, राजा से बात किया, तो राजा ने कहा मुझे ये सब राजकार्य में कोई रुचि नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे भगवान को दर्शन करना है। जब तक मैं भगवान को दर्शन नहीं करूंगा मुझे कोई चीज पे कुछ रुचि नहीं है। तब विद्यापति ने कहा कि ऐसे भगवान को कौन दर्शन कराएगा, भगवान तो भौतिक आंखों के द्वारा दर्शन नहीं कर सकते हम। तब राजा ने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे दर्शन करना ही है। तो विद्यापति ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगला दिन राज्यसभा में बहुत सारे लोग उपस्थित थे, उन्होंने घोषणा किया ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमारे राजा इंद्रदुम्न को भगवान का दर्शन करा सकता है। तब दूर से एक आवाज आया, एक पर्यटक ने कहा कि मैं दर्शन करा सकता हूं, क्योंकि मैं दक्षिण भारत में घूमते घूमते भगवान का भजन करते हुए उत्तर की ओर मैं आया पूर्वी तट से, आते आते मुझे एक बहुत सुंदर सा पहाड़ का पहाड़ दिखाई पड़ा जिसका नाम है नीलाचल। और उधर जैसे प्रवेश किया मेरा मन पूरा शांत हुआ, अपने आप एक प्रकार का निर्भयता को मैं अनुभव किया। और मैं ऊपर चढ़ते चढ़ते गया तो पहाड़ के ऊपर एक जगह मैंने भगवान साक्षात विग्रह का दर्शन किया। मैंने उधर भगवान निवास करते हैं, किस रूप में निवास करते हैं? नीलमाधव के रूप में निवास करते हैं। तो नीलमाधव के रूप में हैं, उनका दर्शन करो तो भगवान ही हैं, और कहीं आपको भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होगा। तब राजा इंद्रदुम्न तुरंत सुनते हैं, उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं, जाके दर्शन करता हूं। तो विद्यापति ने कहा इंद्रदुम्न को आप रुको, मैं पहले जाऊंगा, मैं जाके पहले देख के आऊंगा कहां है वो और कहां रास्ता कैसे है, सच में है कि नहीं, सबसे पहले मुझे जाने दो। तो इंद्रदुम्न बैठ गया और विद्यापति वो गए, मंत्री वो घोड़े के ऊपर चलते चलते गए, जाके नीलाचल पहुंचे। नीलाचल जैसे पहुंचे तो बहुत सारे पहाड़ है उधर, कहां मिलेंगे? क्योंकि वो पर्यटक ने कहा था कि एक बड़ा तालाब है, वो तालाब के बाजू में बड़ा सा एक बैनियन ट्री है, अश्वत्थ वृक्ष है, और उधर मंदिर है। तो कितने सारे अश्वत्थ वृक्ष है वो दिखाई नहीं पड़ रहा था, कहां जाऊं? तूने सोचा कि इतना दूर से आया हूं, मैं थका हुआ हूं या थोड़ा आराम करता हूं। उन्होंने दूर में देखा एक थोड़ा सा बस्ती बसा हुआ था, और उसकी वो जैसे गया तो रास्ते में उनको बहुत सारे सुअर दिखाई पड़े। अस्तित्व में वो बस्ती तब सबर जातियों का, ये सबर जाति लोग सुअर को देखभाल करते अपने आप उसके ऊपर जीवन यापन करते हैं। जैसे इंद्रदुम्न विद्यापति गए तो बस्ती में बहुत झोपड़पट्टी थे, उनमें से थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला घर था, उन्होंने सोचा कि ऐसा लगता है कि इधर का लीडर होगा। तो दरवाजा खटखटाए तो दस एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला तो उन्होंने कहा कि मैं अवंतीपुर का राजा इंद्रदुम्न का मैं मंत्री हूँ विद्यापति। और जैसे बात को सुना तुरंत उन्होंने कहा कि आप आए हो, बड़ा सौभाग्य हमारे घर में, आइए आप जितना दिन चाहिए उधर रुकिए, ऐसा उन्होंने कहा। ये सबर जाति का जो लीडर था उनका नाम था विश्ववसु। तो विश्ववसु ने कहा कि आप इधर रहो, मेरा बड़ा कितना सौभाग्य है, आप तो हम तो नीच जाति के है, आप तो विद्वान ब्राह्मण हो, आप हमारे घर में आए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा करके उनको रखे। तो जैसे टाइम चलता गया कुछ दिन हुआ तो विश्ववसु का एक पुत्री थी जिनका नाम था ललिता, और विद्यापति का ललिता के प्रति थोड़ा सा आकर्षण हुआ और दोनों के बीच में प्रेम हुआ। तो विद्यापति ने कहा अपने विश्ववसु को कि आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। बड़ा सौभाग्य समझा कि हम तो नीच जाति के, आप ब्राह्मण हो तो मेरी पुत्री अगर ब्राह्मण बन रही है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा अगर उन्होंने विवाह कराया। तो विद्यापति रोज विचार कर रहे थे कि मैं आया किसके लिए इधर, मैं आया नील माधव का दर्शन करने के लिए और आके मैं क्या कर बैठा हूं। लेकिन रोज वो देख रहे थे कि ये विद्यापति विश्ववसु जो है कहीं जाता है और शाम को कहीं आता है। शाम को जब आता है पूरा उनका जो घर है सुगंधित हो जाता है, सुंदर सुंदर फूल लाता है, अगरबत्ती लाता है। और ये सब देख के उन्हें अपनी पत्नी ललिता से पूछा, ललिता बताओ कि तुम्हारे पिताजी कहाँ जाते हैं। ललिता ने एकदम घबरा गई, उन्होंने कहा कि ये बड़ा टॉप सीक्रेट है, ये किसी को बता नहीं सकती हूं मैं। तो विद्यापति ने कहा किसी को मत बताओ लेकिन मैं तो अब तुम्हारा पति हूं, पति को तो बताना चाहिए, ऐसा सीक्रेट नहीं रखना चाहिए पति के साथ। तब ललिता ने क्या किया, तापते पति देव आप किसी को मत कहना, मेरे जो पिताजी है वो नीलम माधव का सेवा करने जाते हैं, वो इतना ये अच्छे सेवक है नीलम माधव, ये सारा जगत में केवल मेरे पिताजी से ही वो सेवा ग्रहण करते हैं और किसी से सेवा ग्रहण नहीं करते, और मेरे पिताजी को ये बात मालूम पड़ गया तो मुझे मार देंगे। जैसे बात चल रहा था तो विश्ववसु वो दूसरे कमरे में थे, उनको सुनाई पड़ रहा था नीलम माधव बार बार उनके मन में आ रहा था, उन कौन बोल रहा है क्या हो रहा है। तो तुरंत उन्होंने दरवाजा खोल के उन्होंने जोर से चिल्लाया, कौन है नीलम माधव के बारे में कौन कह रहा है, मेरे नीलम माधव किसी के पास भी सेवा ग्रहण नहीं करेंगे, केवल मेरे साथ ही ग्रहण मेरे द्वारा ही सेवा ग्रहण करेंगे, ऐसा उन्होंने चिल्ला के कहा। तो उन्होंने देखा ललिता जो है विद्यापति को ये सब बातें कहने लगी। तब एकदम गुस्से में विद्यापति ने कहा ललिता को, मैं तुमको अभी मार दूंगा। तो ललिता ने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो मेरे पति हैं, पति को तो कम से कम बोलना चाहिए ना। तब विद्यापति और विश्वसु कहा कि आप तो नील माधव का सेवा करने के लिए जाते हो, मैं तो आया हूं उनका दर्शन करने के लिए, बड़ा अच्छी बात है आज कल जो है मुझे आप दर्शन करने लेके जाइए। तो विश्वसु और एकदम क्रोधित हो गए। तो ललिता उनके पैर पड़ के उन्होंने कहा कि आपके तो दामाद है, आपके तो ये सन इन लॉ है, तो मेरे पति है, तो कम से कम इतना तो करो। तो विश्वसु ने कहा ठीक है मैं लेके जाऊंगा उनको, लेकिन उनका आंख के ऊपर पट्टी बांध के लेके जाऊंगा, क्योंकि ये जाके किसी को कहेगा सब लोग आके उनका दर्शन करेंगे, फिर सेवा करेंगे, तो मैं अपनी सेवा जो है किसी को नहीं दूंगा, ऐसा उनका भाव था, ऐसा स्पेशल भाव था। तब विद्यापति ने कहा ठीक है। तगला जिन विश्ववसु विद्यापति का आंख के ऊपर पट्टी बांध के वो लेके गए नील माधव को दर्शन कराने के लिए। लेकिन रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर कोयलों की आवाज, बहुत सुंदर शीतल हवाएं बहने लगी, तो विद्यापति को बहुत आनंद आ रहा था। और जैसे एक जगह पहुंचे तुरंत उनको सुनाई पड़ा, क्या सुनाई पड़ा, पुरुष सूक्त का उच्चारण सुनाई पड़ा। पुरुष सूक्त इतने बहुत सुंदर मंत्र है, वैदिक मंत्र है, ऐसा स्पष्ट रूप में उच्चारण हो रहा था। विद्यापति ने पूछा विश्वस इतना सुंदर कौन गा रहा है। विद्यापति ने कहा ये सब इंद्र चंद्र वरुण देव सब लोग आते हैं, आके हमारा नील माधव को सेवा करते हैं, लेकिन मेरा नील माधव जरा सब इनका पसंद नहीं है, नील माधव जो है मेरे द्वारा खिलाए गए चीज ही खाते हैं, ये सब आके उनको तंग करके जाते हैं, परेशान करके जाते हैं। तो तुरंत जाके अपने पूरा फल फूल जो भी सब कुछ था देवता लोग अर्पण किए थे विश्व नीलमाधव को, सब निकालने लगे और ये सब देवता लोगों को गाली देने लगे। ये देवता लोग मालूम नहीं मेरे भगवान को क्या पसंद है, ये जो भी देवता लोग अर्पण करके गए थे वो सब निकाल के फेंकने लगे। विद्यापति ने कहा कि भगवान के पास आ गए, कम से कम मेरा पट्टी तो खोलो। तो विश्वास ने कहा ठीक है मैं पट्टी खोलता हूँ। जैसे पट्टी खोला तो विद्यापति ने सुंदर नीलमाधव को विग्रह का दर्शन किए। जैसे दर्शन किए उनके पूरा भाव के लक्षण प्रकट हुए और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके विग्रह का सुंदरता को देख के एकदम चकित हो गए। तो विश्वास ने कहा ठीक है तुमने दर्शन कर लिया, इधर ही रहना, अभी जाता हूँ, क्योंकि मेरे नीलमाधव जो है ये सब फल फूल उनको अच्छा नहीं लगता, जंगली फूल अच्छा लगता है, जंगली फूल अच्छा लगता है, और वो भी मेरे हाथों से स्वीकार करेंगे। मैं जा रहा हूँ सब लेने के लिए, इधर से कहीं मत जाने, इधर रहो करके वो बोल के चले गए। तब विद्यापति पूरा माहौल को देखे और उधर उन्होंने देखा कि मंदिर के बाजू में एक बड़ा सा अश्वत्थ वृक्ष था, और वृक्ष के बाजू में क्या है एक बड़ा सा तालाब था, और वृक्ष के ऊपर एक कौवा बैठा था। अचानक क्या वो कौवा नीचे गिर पड़ा वो कुंड में। जैसे कुंड में नीचे गिर पड़ा विद्यापति के सामने वो कौवा जो है चार हाथ धारण किए, चतुर्भुज धारण करके वो मुक्त हो गया। तो विद्यापति ने सोचा ये तो मुक्ति कुंड है, जो भी व्यक्ति इसके अंदर कूदता है तो मुक्ति प्राप्त करता है, तो जीवन का लक्ष्य तो मुक्ति है, सब चीजें क्या है, बहुत ही चीजें में क्या रखा है करके वो जाके उन्होंने क्या किया, वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुंड में कूदने के लिए प्रयास कर रहा था। उसी समय आकाशवाणी, हे विद्यापति तुम बड़े सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, तुम आया किसके लिए? आया इंद्रद्युम्न को खबर पहुंचाने के लिए कि नीलमाधव को उपस्थिति के बारे में, तुम अपने आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते, स्वार्थ है। और जैसे ये आवाज सुनाई पड़ा तो पीछे से विश्वस आया। विश्वस आके उनको क्या ही आवाज है, कौन है इंद्रद्युम्न, ये सब उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तुरंत उनको लगा कि ये भी कुछ तो गड़बड़ है इधर। तो विद्या विश्वस जाके विद्यापति को पूछा ये क्या हो रहा है। तो विश्व विद्यापति ने कहा कि ऐसा ऐसा है कि मेरा राजा जो इधर आके दर्शन करना चाहते इसलिए मैं आया हूँ। सारा बोल जैसे उन्होंने खोल दिया, विश्वस को ये जरा सा भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि आप लोग आके मेरे सेवा को छीनना चाहते हो। तो उन्होंने क्या किया, मुंह में ऐसा कपड़ा वगैरह डाल दिया, विद्यापति को बांध के उन्होंने रख दिया और अपना सेवा करने के लिए चले गए। उस समय ललिता को कुछ तो लगा, कुछ तो गड़बड़ है, मेरे पिताजी जो है ये नीलमाधव के प्रति इतना आसक्त है कि वो किसी को भी आने नहीं देंगे, और इतना हद तक कि वो मार भी सकते किसी को अगर कोई व्यक्ति उनका सेवा को छीनने के लिए प्रयास करता है। तो ललिता भागते भागते पहुंची, उन्होंने देखा अपने पति जो है नीचे गिरे पड़े हुए हैं, हाथ पैर बंधा हुआ है और मुंह में कपड़ा वगैरह ठोसा हुआ है। तो ललिता तुरंत हाथ पैर खोल दिया, तो उनने विद्यापति ने कहा ललिता को आप इधर ही रुको, मैं ठीक 15 दिन में आऊंगा, आके अकेले नहीं आऊंगा, मैं अपना इंद्रद्युम्न राजा को भी लेके आऊंगा, साथ में सारा प्रजा को भी लेके आऊंगा। किसके लिए? ये विग्रह का दर्शन कराने के लिए। तब ललिता ने कहा कि मुझे भी लेके चलो इधर से, मुझे पता नहीं मेरे पिताजी में क्या करेंगे। इंद्रद्युम्न ने कहा विद्यापति ने कहा आप चिंता मत करो, इधर रहो, मैं तुरंत आऊंगा। तो विद्यापति निकल पड़े अवंती की ओर, और उधर राजा इंद्रद्युम्न को इधर ने खबर दिया। तो राजा इंद्रद्युम्न ने क्या कहा कि जैसे जिस भाव से वो गणपति भट्ट आए थे ना जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए आएंगे, दर्शन करके जाने के लिए नहीं आएंगे, ऐसे भाव से इंद्रद्युम्न ने कहा क्या फायदा है बड़ा राज्य का है अवंतीपुर का। अवंतीपुर बड़ा राजा है, बड़ा प्रसिद्ध, उस समय पूरा वर्ल्ड का हेडक्वार्टर था अवंतीपुर। इंद्रद्युम्न ने कहा कि सारा प्रजा को घोषणा किया मैं केवल जा रहा हूं आने के लिए नहीं। अब देखिए आज का भाव यही है कि मंदिर में जाने के लिए ही आना है, आने के लिए जाना नहीं है। तो अवंतीपुर में राजा ने क्या किया, घोषणा किया कौन कौन आना चाहते हो। तब देखो पूरा शहर का शहर सब लोग निकल पड़े नीलमाधव का भगवान का दर्शन करने के लिए। पूरा मिलिट्री सब सेना सब जो भी घर बार सब कुछ छोड़ के निकल पड़े, और पूरा देखिए पूरा एक पूरा शहर आ रहा है किसके लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। पूरा सत्य की घटना है, सत्य घटना है। और आए उन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर पहाड़ है, सुंदर वातावरण है नीलाचल में, और वो लोगों ने अपना बस्ती बचाया उधर। और उधर से राजा ने कहा इंद्रद्युम्न ने कहा दिखाओ तुम्हारा विग्रह, नीलमाधव का दर्शन करना है मुझे। तो विद्यापति वो लेके गए। रास्ते में इंद्रधनुष को रास्ते में लेके लेके उन्होंने देखा एक सरसों का छोटा सा झाड़ था। उन्होंने कहा वाह, यही सरसों का झाड़ से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। इंद्रधनुष ने कहा क्या ये सरसों को झाड़ को दिखाते मुझे, भगवान को दिखाओ। रास्ते में क्या हुआ था, विद्यापति को जब आंखों के ऊपर पट्टी बांध के विश्वास लेके जा रहे थे, वो रास्ता तो मालूम होना चाहिए। उसके लिए विद्यापति ने क्या किया था, अपनी ललिता अपनी पत्नी से थोड़ा सा सरसों मांगे थे। उन्होंने कहा रास्ते में जाते जाते उन्होंने क्या किया, एक 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 सरसों छोड़ के जाए, और जैसे 15-20 दिन ऐसा हुआ तो तुरंत वो थोड़ा सा छोटा झाड़ हो गया। बारिश का भी मौसम था और ये सरसों का झाड़ एक के बाद मिल रहा था, वो रास्ते में जा रहे थे। लेकिन विद्यापति को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। पहले जब विश्ववसु के साथ वो निकल पड़े तो वो टाइम में क्या हो रहा था, बहुत सुंदर सा वातावरण था, कोयल की आवाज सुनाई पड़ रही थी। अभी तो तूफानी वातावरण है, अभी तो सियार की आवाज सुनाई पड़ रहा है। जैसे जैसे करके वो पहाड़ चढ़ के ऊपर पहुंचे, ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा आज जगह गंदा पड़ा हुआ है, जितने पेड़ है उनके जो पत्ते है वो सूख गए, वो नीचे गिर पड़े हुए, और मुक्ति कुंड पूरा सूख गया है, और वो मंदिर का दरवाजा पूरा बंद है। और विद्यापति गए, इंद्रधनुष ने कहा ये कहां लेके आए मुझे, इधर भगवान निवास करते हैं क्या? तो जैसे विद्यापति ने जोर से वो दरवाजा खोला, खोलते उन्होंने देखा उधर कोई नीलमाधव नहीं है। और विद्यापति एकदम को घबराहट हुआ। इंद्रधनुष ने सोचा कि क्या है, नीलमाधव नहीं है, कौन लेके गया? तब विद्यापति ने कहा कि हो सकता है विश्ववसु का काम है। तुरंत तो लोग गए वो सबर जाति की बस्ती में, विश्ववसु के घर में जाके जैसे दरवाजा खटखटाए तो विश्ववसु खोला। खोलते विद्यापति ने पूछा कि कहां है मैं हमारे नीलमाधव? तो विश्ववसु ने कहा ये तुम्हारी वजह से मैं हमारे नीलमाधव चले गए, पता नहीं कहां गए, तुम लोग जो है उनको चुरा लिए होंगे, कहां गए? तो दोनों के बीच बहुत बहस हुआ। इंद्रधनुष ने तलवार निकाला, निकाल के कहा विश्ववसु को अगर नीलमाधव को मुझे नहीं दोगे, दर्शन नहीं कराओगे तो तुमको अभी मार दूंगा। और अपनी सेना को हर जगह भेजा, सवर जाति में हर बस्ती में हर जगह हर घर में जाकर तलाश किया, कहीं नीलमाधव का विग्रह प्राप्त नहीं हुआ। तब इंद्रधनुष को क्रोध में विश्ववसु को मारने ही वाले थे, उसी समय नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारद मुनि ने कहा इंद्रधनुष को, इंद्रधनुष को मारो मत, ये भगवान की योजना है। पहले 50 साल तक किसके आयु, ब्रह्मा जी का जो 50 साल है जिसको प्रथम परार्ध कहा जाता है, तब तक भगवान जो है नीलमाधव के रूप में उपस्थित रहेंगे, और केवल सबर जाति का जो ये वंशज है, विश्ववसु के वंशज है, उन्हीं के द्वारा वो सेवा स्वीकार करेंगे। ये उनका भाव है, हर एक विग्रह का अपना अपना भाव होता है, ये नीलमाधव का भाव है। लेकिन ब्रह्मा जी का ये 50 साल पूर्ण हुआ और ये द्वितीय प्रार्ध में ये लीला संपन्न हुई। द्वितीय प्रार्ध मतलब ब्रह्मा जी का 100 साल का जीवन है, पहले 50 साल हो गया, अभी दूसरा 50 साल का पहला दिन अभी चालू है, जिसको द्वितीय प्रार्ध कहा जाता है। ये द्वितीय प्रार्ध का यह पहला दिन है, अभी ये नीलमाधव जो है जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होंगे, और जगन्नाथ जी का भाव क्या है, एक से नहीं अनेकों लोग। इसलिए आप मंदिर में अकेले आते हो जगन्नाथ जी इतना प्रसन्न नहीं होते, आप अनेकों को लेके आना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ के भाव है बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग प्रसाद ग्रहण करें, ये उनका भाव है। नीलमाधव मत के क्या, एक ही आके थोड़ा सा कुछ तो दे दो चले जाओ, तो हर एक विग्रह का अलग अलग भाव होता है। ये जगन्नाथ जी के इस प्रकार का भाव है कि अनेकों लोग आना चाहिए। तो इंद्रधनुष को जैसे उन्होंने कहा कि नारद मुनि ने इस बात को कहा, दोनों शांत हो गए, और इंद्रधनुष ने सारे प्रजा को सेना को कहा कि हम इधर बड़ा सा भव्य मंदिर बनाएंगे और इधर जगन्नाथ जी का स्थापना करेंगे। और सभी लोग दिन रात एकत्रित, सबर जाति के लोग और अवंती के सारे प्रजा मिलके एक भव्य मंदिर का उन्होंने निर्माण किया। निर्माण करने के बाद जगन्नाथ जी का स्थापना करने के लिए सब लोग तैयार हुए, बड़ा सा यज्ञ हवन का सब तैयारी हुआ, और यज्ञ के लिए विद्यापति सब आयोजन कर रहे थे। इंद्रधनुष ने कहा कि ये विग्रह का जो स्थापना है वो करेंगे कौन करेंगे, स्वयं ब्रह्मा जी करेंगे। तो ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए गए, तो ब्रह्मा जी को जब बुलाने के लिए गए तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा टाइम लगा आने के लिए। तो कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी आए, तो इंद्रधनुष से पूछा कि क्यों आए हो? इंद्रधनुष ने कहा कि हम सब इंतजार कर रहे हैं आपके लिए, आप आके जगन्नाथ जी का आप स्थापना करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कितना देर से आए हो आप? थोड़ा देर हुआ आए हुए, तो समय हुआ 2-4 मिनट हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी जाओ, क्योंकि मेरे जो प्लैनेट में, मेरे ग्रह में जो है समय जो है बहुत धीरे धीरे जाता है, नीचे पृथ्वीलोक में जल्दी समय बीत जाता है, आज जल्दी जाओ जाके देखो क्या स्थिति में आऊंगा। तो जैसे विद्यापति इंद्रद्युम्न आए पृथ्वीलोक में आके देखे, वही अवंत वही जगह जहां उन्होंने मंदिर बनाया था, सब मंदिर जैसा का वैसा ही है, लेकिन उनके अंदर जो माहौल में उत्सव के माहौल में गए थे ब्रह्मा जी के लोक में, वो उत्सव का माहौल नहीं था, पूरा मंदिर खाली पड़ा हुआ था, वो जो यज्ञ का जो हवन कुंड है वो भी नहीं था, उतना ही नहीं अपनी पत्नी गुंडीचा नहीं है, विश्ववसु विद्यापति कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सोच रहे कहां गए सब लोग, कहां गए सब लोग, ऐसे ढूंढ रहे थे, दूर से एक आवाज आया, क्या कर रहे हो आप इधर, चलो उधर, हमारा राजा गलमाधव जो है गोपाल विग्रह की स्थापना करने के लिए बड़ा शोभा यात्रा निकल रहा है। तूने सोचा कि कौन हो आप, ये राजा गलमाधव कौन है, गोपाल विग्रह क्या है? तो एक व्यक्ति था जिससे मुलाकात हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप जानते नहीं हो, आप कहां से आए हो, दिखने में तो बड़ा राज परिवार के रखते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं हमारा राजा गलमाधव जो है इधर गोपाल का विग्रह स्थापना करना चाहते मंदिर में। तुरंत उनको गुस्सा आया इंद्रद्युम्न को, ने कहा कि आप कौन हो, इधर का राजा मैं हूं राजा इंद्रद्युम्न, और इधर जगन्नाथ जी का विग्रह स्थापना होगा, गोपाल का विग्रह स्थापना नहीं होगा। तो जैसे बात चल रहा था दूर से एक राजा आए, उनका नाम था गलमाधव। मैंने कहा क्या हो रहा है इधर, तो इंद्रद्युम्न ने कहा कि मैं इधर का राजा हूं, इधर कोई गोपाल का विग्रह का स्थापना नहीं होगा, जगन्नाथ जी का विग्रह स्थापना होगा। तो गलमाधव ने कहा कौन, तुम कौन हो, मैं इधर का राजा हूं। तो वैसे दोनों के बीच में जैसे बहस हुआ, दोनों तलवार निकले युद्ध करने के लिए। तब एक कौवा था, वो बड़ा हिस्टोरियन है, हमारा पूरा शास्त्रों में बड़ा ऐतिहासिक का पौराणिक अगर कोई है वो कौवा है, वो पूरा हिस्ट्री हर चीज जानता है, जहां जहां कोई भी खता है, अगर कोई ऐसा कोई चीज है जो सब कथा को जानता, वो एक कौवा है, इसका नाम है काकभूषणी, रामायण में आता है, महाभारत में आता है, हर जगह उनका हुआ था हो जाता है, कहीं कोई व्यक्ति भूल जाता है हिस्ट्री को तो जाके बोल देता है हिस्ट्री। तो एक काकभूषणी आके उन्होंने कहा देखो इंद्रद्युम्न तुम जानते नहीं हो, तब जब ब्रह्म लोग गए थे ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए, ये सब लोग तुम्हारा इंतजार करते 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 इसी जगह सब लोग ने अपने शरीर त्यागा और सब पूरा परिवार सब लोग नष्ट हो गया पूरा, क्योंकि इधर बड़ा सा तूफान आया था, ये रेती का ये तूफान आया था और वो रेती से पूरा मंदिर भर गया था, पूरा रेगिस्तान जैसा हो गया था ये जगह। और एक दिन राजा गलमाधव वो घोड़े के ऊपर सवार होके जा रहे थे, अचानक घोड़ा जो है एक जगह जाके गिर गया। गलमाधव ने सोचा ये तो रेगिस्तान है, इधर घोड़ा क्यों गिरा टकरा के, तो उन्होंने देखा एक पत्थर था, थोड़ा सा खुदाई किया और पत्थर बड़ा होने लगा, और लोगों को बुला के सेना को बुला खुदाई करना देखा तो वो पूरा मंदिर हुआ है, मंदिर जो है पूरा रेती से भरा हुआ था। तब राजा गलमाधव इधर गोपाल का विग्रह स्थापना करना चाहते, तब उन्होंने संकल्प किया। तो जैसे गलमाधव इन्होंने बात सुना काकभूषणी का, दोनों समझ गए क्या हुआ करके, तो राजा गलमाधव ने कहा कि राजा इंद्र को प्रणाम किया, अस्तित्व में आपने मंदिर बनाया, इधर जगन्नाथ जी का ही संकल्प हुआ है, तो जगन्नाथ जी का स्थापना होगा, आप चलिए मेरे राज्य में, जब तक भगवान आगे आदेश नहीं देंगे और जब तक भगवान जगन्नाथ जी प्रकट नहीं होंगे तब तक हमारे साथ आप ही राज्य संभालो। इंद्रदुन ने कहा नहीं भाई, मैं बहुत थक गया हूं, मैं इसी मंदिर में इधर ही शरीर त्याग कर दूंगा, जब तक भगवान मेरी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे दर्शन देने का, तब तक जीने का क्या फायदा है। ऐसी भाव से राजा इंद्रद्युम्न जो है उधर ही बैठ गए और सोचने लगे कैसे कैसे मंदिर बनाया गया था, और विद्यापति और अन्य जितने भी उनके साथ में थे उन सबका स्मरण करते, उनको थोड़ा सा नींद आया, उस नींद में भगवान प्रकट हुए, प्रकट हो गए, उन्होंने कहा राजा इंद्रद्युम्न अभी नजदीक में मैं प्रकट हो गया हूं, एक बड़ा सा लकड़े के रूप में हूं, दारू ब्रह्म के रूप में मैं प्रकट हुआ हूं, आप उनको लेके आओ और जगन्नाथ जी का रूप प्रदान करके इधर तैयार करो। तो राजा इंद्रद्युम्न गए, कहा जाके गलमाधव को कहे इस बात को, गलमाधव ने क्या किया, तुरंत सारा सेना को लेके गए, तो समुन्द्र था, समुन्द्र के तट में तीन बड़े बड़े जो लकड़ी है वो आया था, ये दारू ब्रह्म कहा जाता है, ये दारू ब्रह्म प्रकट हुआ, तो सारा सेना जाके उसको उठाने के लिए गए तो कोई एक इंच भी हिला नहीं पा रहा था, तो सारा सेना को लगाया, हाथियों को लगाया, कोई हिली नहीं, हिला ही नहीं पा रहा था। एक वृद्ध व्यक्ति था, उन्होंने कहा कि मैं कुछ करके देखता हूं। तो आके जैसे उनको स्पर्श किया, अपने आप एक लकड़ी जो है वो सब निकल के हृदय आने आ गए। आके जैसे वो पूरा मंदिर में लेके आए, उस समय किसी ने कहा कि कोई ऐसा कोई व्यक्ति है इसको जगन्नाथ का रूप धारण कर सकते, प्रदान कर सकते हैं, कोई कारपेंटर है जो विग्रह को बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोग आके प्रयास किया, लेकिन सब लोग विफल हो गए। तो एक वृद्ध व्यक्ति आया, कहा कि मैं करके देखता हूं। तो जैसे उन्होंने अपना खैनी को रखा, थोड़ा सा लगाया हैमर से, उसे क्रैक हुआ। पहले लगा है मारते थे, अपना खैनी टूट जाता था, चिजल टूट जाता था, लकड़ी को कुछ नहीं होता था, खर्च भी नहीं पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि मैं विग्रह को बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त के ऊपर, 21 दिन तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं पूरा भगवान का विग्रह बनाऊंगा इधर, तब तक कोई मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। तब इंद्रदेव ने कहा ठीक है। तो इंद्रदेव बैठे रहे दरवाजे के बाहर, और अंदर कमरे में क्या हो रहा है, टक 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 आवाज आ रहा है। तो इंद्रदेव वो बड़ा प्रसन्न हो रहे थे, कब 21 दिन होगा, कब मैं भगवान का दर्शन करूंगा। जैसे 11 दिन हुआ, 12वां दिन आवाज नहीं आया। तो इंद्रदेव बड़े परेशान हो गए, क्या हो गया है, तो वृद्ध व्यक्ति तो अंदर तो मर तो नहीं गया। तो 13 दिन कोई आवाज नहीं है। जैसे 14वां दिन को रहा नहीं गया, मेरा भगवान को कुछ ना हो जाए, पहले तो मैंने गलती कर दिया। जब मैं मुझे खबर मिला कि भगवान जो है नीला माधव के रूप में प्रकट है, तो उसी समय मुझे जाना चाहिए था, मैंने विद्यापति को भेजा, अभी मैं स्वयं जाके देखूंगा क्या हो रहा है। उन्होंने दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खोले तो सामने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये तीनों विग्रह को उन्होंने दर्शन किया। और दर्शन करते उनको एकदम आनंद भी हुआ, साथ साथ में उनको एकदम आंखों से आंसू आने लगे। वो सोचने लगे मैं कितना बड़ा अपराधी हूं, मैं 21 दिन तक रुका नहीं, 14वां दिन में खोल दिया, इसलिए भगवान जो है उनका रूप जो है अधूरा प्रकट हुआ, उनका हाथ जो है पूरा प्रकट नहीं है, उनका पूरा चेहरा पूरा नहीं बना हुआ है। ये विकराल जो स्वरूप है भगवान का, ये विचित्र स्वरूप है, ये स्वरूप का कारण मैं ही हूं, ये इस प्रकार मैं इसका कारण होने की वजह से जीने का क्या फायदा है, मैं अपने आप को मार दूंगा करके अपने आप को आत्महत्या करने के लिए वो। तब उस समय नारद मुनि प्रकट हुए, प्रकट होकर इंद्रदेव को कहे कि आप चिंता मत करो, यही भगवान का निजी रूप है, मैं इस रूप को दर्शन किया था। तब नारद मुनि इंद्रदेव को ये कहानी बताते हैं, ये द्वारका की जो कहानी बताया था, रोहिणी माता सारे रानियों को बताना, और अन्य जितने भी जो भगवान ने किस प्रकार रूप धारण किया जगन्नाथ जी का, वो सब बताया। तो इंद्रदेव शांत हुए, तो शांत हुए तो जगन्नाथ जी का इसको विग्रह को स्थापना करने के लिए तब तैयारी चल रहा था, लेकिन फिर भी इंद्रदुन बड़े दुखी थे। तो सोच रहे थे कि मैं सोच रहा था कि ब्रह्मा जी आएंगे और विग्रह का स्थापना करेंगे। तो जैसे सोच रहे थे ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए, ने कहा कि इस बार मत आना मेरे पास, मैं स्वयं आ गया हूं। तो ब्रह्मा जी आज ही के दिन ये जो रूप है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उनको ब्रह्म प्रतिष्ठा, ब्रह्मा जी ने प्रतिष्ठा किया। और फिर भी इंद्रदुन बड़े दुखी थे, उन्होंने कहा कि आज विश्ववसु विद्यापति वो सब लोग कहाँ गए। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से जल निकाल के उन्होंने ये गलमाधव के बल जल से उन्होंने जल फेंका, तो वो विद्यापति के रूप में प्रकट हुए। उनकी पत्नी गुंडीचा बन गई, और ये जो वृद्ध व्यक्ति था जिन्होंने वो लकड़ी को लेके आया था, वो विश्ववसु हो गए। तो वही लोगों के साथ इन्होंने बड़े प्रसन्न होते हुए भगवान जगन्नाथ जी का उन्होंने पूजा किया, उन सब ने उनका भजन किया। उस समय ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना किया, हे ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दीजिए ताकि मुझे कोई और आगे जन्म कोई और संतान ना हो। क्यों आगे कोई संतान होगा, कोई आगे बताएगा ये जो मंदिर है हमारे पिताजी ने बनाया, मेरा मंदिर है ये, तो ये किसी मेरा तेरा किसी का नहीं होना चाहिए, ये जगन्नाथ जी जो इधर का प्रेसिडेंट होना चाहिए, कोई और प्रेसिडेंट नहीं। तो इंद्रदुम्न का ये विचार था। और दूसरा ने कहा कि और एक इच्छा ये है, और एक वरदान चाहिए कि मेरे जगन्नाथ जी का हाथ कभी सूखा नहीं होना चाहिए, हमेशा गीला होना चाहिए, यानी जैसे भोग लगाया ग्रहण किया, हाथ धोने के लिए जाएंगे तब तक उसके पहले और एक भोग, ऐसा 2400 घंटा हाथ उनका गीला ही होना चाहिए। क्योंकि उनका प्राकृतिक में जो उद्देश्य क्या है, सभी लोगों को कृपा प्रदान करना है। अस्तित्व में ऐसा भाव है जगन्नाथपुरी में कि भगवान इंतजार करते कब आएगा। एक पंडा ने कहा, सत्य कहा उन्होंने, पता नहीं क्या है, उन्होंने कहा उनका ड्यूटी था जगन्नाथ जी को सुलाने का, तो जगन्नाथ जी को सुलाने के लिए उनका ड्यूटी था, सुलाने के लिए गए वो भी पट बंद करने के लिए। तो उन्होंने कहा, जगन्नाथ जी ने कहा कि मुझे ए बंद मत करो, खोलो। तो उन्होंने पूछा जगन्नाथ जी, क्यों? क्योंकि मेरा भक्त आने वाला है। तो ऐसा हुआ, एक घंटा उन्होंने ऐसे खोल के रखा, एक घंटे के बाद पूरा मंदिर खाली था, कोई एक आया दर्शन करने के लिए। तो ये जगन्नाथपुरी ऐसा जगह है, जगन्नाथ जी ऐसे भगवान के जो स्वरूप है, जहां इंतजार करते हैं भगवान ये कब आएगा मेरा दर्शन करने के लिए। इधर क्या है, बाकी मंदिरों में क्या है, भगवान का जो विग्रह ऐसा है कि उनके टाइम के अनुसार हमको जाना पड़ता है, लेकिन जगन्नाथ जी क्या है, हमारे टाइम के अनुसार वो अपना खुले करते हैं। ऐसा है, दिस इज स्पेशलिटी ऑफ जगन्नाथपुरी। एनी हो, ऐसे ऐसे बड़े विशेषता है जगन्नाथ जी के बारे में, वो कभी और आगे की जो क्लासों में कहेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा हुआ, और तीसरा वरदान ये था, इंद्रदेव ने कहा कि जो जो सेवाएं ये सबको प्राप्त हुआ है, मैं जो नियुक्त किया हूं वो सेवाओं को सबको परंपरा के इष्ट होना चाहिए। खास करके आज से लेके रथ यात्रा का एक दिन पहले तक भगवान का पट बंद रहता है अनवसरा। ये अनवसरा के बारे में कभी और कहेंगे, क्योंकि समय हो गया है। अनवसरा ये समय में ये जो सबर जाति के जो वंशज है उन लोगों को सेवा प्राप्त होना चाहिए। दैत्यपति उन लोगों को सेवा प्राप्त होना चाहिए। ये टाइम में जो जगन्नाथ जी का सेवा होता है वो बड़ा विचित्र सेवा होता है, विचित्र भक्तों के द्वारा विचित्र भगवान का विचित्र सेवा होता है। ये कैसा है, क्यों होता है, ये सब चीजें कभी और चर्चा करेंगे। इतना तो जानना चाहिए। आज जगन्नाथ जी का बर्थडे है, उनका प्राकट्य दिवस है। जन्माष्टमी और गौर पूर्णिमा से अभिन्न है, उतना ही बड़े उत्साह के साथ हमको ये बात मनाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हरे कृष्णा। आज का जो कार्यक्रम इस प्रकार होगा, अभी 10:30 बजे सबके प्रसाद होगा, उसके बाद 11 बजे से 12 बजे तक मंदिर में आ जाइए वापस, उधर भजन होंगे। 12 बजे ठीक अभिषेक होगा, और 1 बजे तक अभिषेक वगैरह होगा, उसके बाद 1:30 बजे आरती होगा, और 1 बजे जो अंग्रेजी प्रवचन होगा अपना वो भक्तिवेदांत हॉल में होगा, जो लोग इंग्लिश प्रवचन में अटेंड करना चाहते होगा। और सभी लोगों के लिए जो फीस्ट प्रसाद है वो 1:30 बजे है, अभी आपके लिए ब्रेकफास्ट प्रसाद है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो प्रभु जी जा रहे हैं, इनसे पहले इनका आभार व्यक्त कर दिया जाए। सभी भक्तगण हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा प्रभु जी का आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों से निवेदन है कि 5 मिनट के लिए रुक जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उनको सुन के बाद में जाइए। सभी बैठ जाएं कृपया करके। तो आज भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है, स्नान यात्रा उत्सव। स्नान यात्रा का अर्थ होता है भगवान का अभिषेक, जैसा जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का अभिषेक होता है, गौर पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक होता है, इसी प्रकार आज जगन्नाथ जी का जन्मदिन है और आज उनका अभिषेक होगा, उसी को स्नान यात्रा उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। आपने सुना जगन्नाथ जी का प्रागट्य का कारण, 2 कारण प्रभु जी ने महत्व बताए विशेषकर, दोनों में एक ही बात मिलती है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। ऐसे सभी भगवान के जो अवतार हैं वे भक्तों की इच्छा या भक्तों के वचन को सत्य करने के लिए प्रकट होते हैं। दुर्गा जी का इच्छा था कि भगवान का प्रसाद सभी को प्राप्त हो, इसलिए भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए। और नारद जी का इच्छा था कि भगवान का यह विचित्र रूप, माधुर्य रूप का दर्शन सभी लोगों को मिले, इसलिए नारद जी का इच्छा और दुर्गा जी का इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं। बहुत ही सुंदर कथा सुना हमने। इसके बाद विशेष सूचना है, जैसा प्रति रविवार जो मंदिर में प्रसाद बनाने और वितरण करने का सेवा होता है, तो आते रविवार 14 तारीख को हिज ग्रेस गरुड़ ध्वज प्रभु का जो कांग्रीगेशन ग्रुप है उसके द्वारा यह रविवार का प्रसाद बनाने का और वितरण का सेवा होगा। तो सभी भक्तगण जो उनके कांग्रीगेशन में हैं वे इस बात का नोट कर लें। उसके बाद तत्वेता प्रभु विशेष रूप से आप सबको बताना चाह रहे हैं कि जैसा हर रथ यात्रा के दिन भगवान को 56 भोग अर्पित किया जाता है, तो इस वर्ष भी 56 भोग की सेवा है। जो भी अपने घर से भगवान जगन्नाथ जी के लिए भोग अर्पित करना चाहते हैं वे व्यवस्थित रूप से भोग बनाकर लाएं और अर्पित कर सकते हैं। इसके लिए आप तत्वेता प्रभु को बाहर अपना नाम लिखा दीजिए और भोग लाने के लिए आपको जो पात्र अर्पित किया जाता है वो भी अर्पित किया जाएगा, लेकिन सबसे निवेदन है कि वे अपना नाम जरूर लिखवा दें। और विशेषकर जो नित्य सेवा के लिए एक विशेष अनाउंस है, जो नित्य सेवा के मेंबर बने हैं और उनमें जिन्होंने 500 या 500 से ऊपर का नित्य सेवा लिया है उनके लिए विशेष महाप्रसाद और भगवत दर्शन का सुविधा कराया गया है। तो जिन्होंने 500 से ऊपर नित्य सेवा का सेवा लिया है वे बाहर से मंदिर के ऊपर जहां नित्य सेवा का काउंटर लगा हुआ है वहां से भगवत दर्शन और महाप्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष रथ यात्रा के दिन 24 तारीख को, जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का व्यास पूजा भी है, उसी दिन महाराज का भी जन्मदिन है, तो उस दिन हम व्यास पूजा उत्सव मनाते हैं। तो यह व्यास पूजा उत्सव 24 तारीख को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक भक्ति वेदांत हॉल में मनाया जाएगा। तो सभी से निवेदन है कि वे उस समय वहां उपस्थित रहें। और इसके लिए इस अवसर पर जो भी भक्तगण महाराज जी को भोग अर्पित करना चाहते हैं वे अपने घर से भोग बनाकर ला सकते हैं और महाराज जी को यह भोग अर्पित कर सकते हैं। और जो कोई भी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के अभी ना वो तो बोल के हाँ ठीक, जो भी राधा गोविंद महाराज के भोग अर्पित करना चाहते हैं वे भोग बनाकर ला सकते हैं। 24 तारीख को प्रातः 8 से 10 बजे तक भक्ति वेदांत हॉल में यह अर्पित किया जाएगा। और जो भी महाराज को अपना ऑफरिंग देना चाहते हैं वे लिख कर दे सकते हैं, लाल गोविंद प्रभु को या रास मंडल प्रभु को या दिव्य कृष्ण प्रभु को अपना ऑफरिंग लिख कर दे सकते हैं। उस ऑफरिंग को बुक में छापा जाएगा और उसको महाराज को भेंट किया जाएगा। तो कोई भी यह ऑफरिंग लिख कर दे सकता है, भले दीक्षित है या दीक्षित नहीं है, कोई भी भक्त ये ऑफरिंग दे सकता है महाराज के लिए। और श्रीमद् भागवतम का कथा 14 तारीख रविवार से मीरा रोड में हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु के द्वारा प्रारंभ हो रहा है, सेक्टर नंबर 10 में स्वामीनारायण हॉल जो है स्वामीनारायण मंदिर हॉल वहाँ होगा। शाम को 6 से 10 बजे तक यह कथा होगा। आज 14 तारीख से 21 तारीख तक शाम को 6 से 10 कथा का समय है। और साथ साथ में आज से शाम को गौर आरती के बाद गौर लीला का भी कथा यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है मंदिर में, शाम को 7:30 बजे के बाद होगा। और कथा के बाद सभी के लिए प्रसाद भी है। यह गौर कथा हिज ग्रेस सुधांशु प्रभु के मुखारविंद द्वारा श्रवण करने का हमें लाभ प्राप्त होगा। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि 7 दिन तक यह भी कथा चलेगा, तो सब इसका भी लाभ लें, शाम को 7:30 से 9 बजे तक। और जगन्नाथ रथ यात्रा में जैसा कि प्रतिवर्ष होता है आरती सेवा, तो जो भी जगन्नाथ जी के इस आरती सेवा का लाभ लेना चाहते हैं वे अपना फॉर्म भर के आज ही सबमिट कर लें और इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। और विशेषकर खार दर से आए हुए भक्तों का हम स्वागत करते हैं, श्री सीता मोहन प्रभु और चैतन्य संगी प्रभु, तो इनका भी सब स्वागत करेंगे। हाँ, सामवेद प्रभु, तो सभी भक्तगण इनका स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी कुछ ही देर में यहाँ पर भगवान का अभिषेक होगा, 12 बजे अभिषेक होगा। तब तक के लिए थोड़ा सा फलाहार ब्रेकफास्ट है, खिचड़ी प्रसाद है, और खिचड़ी प्रसाद के बाद भगवान का अभिषेक, और उसके बाद 1:30 बजे महाप्रसाद है। हरे कृष्णा।
महाप्रसाद गोविंद राम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्ल पुण्यतम राजन विश्वासने वजायते शरीर विद्याजान जरिंदियता है का दिव्य पहले से सागरे तार मद्दी जीवाती लोग माया सुदूरमती ताके जे तक संसारे कृष्ण बड़ो दयामय परिवारे जीवा जाए सो प्रसाद अंधिल भाई जय अमित बाओ श्री राधा कृष्ण गुण गाओ पेटे पेटे जाके चैतन्य निताय जय निमा जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीय दत्त दाधर शिवासादी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा राय भगवान की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंद
हरे कृष्णा।
करतल बजाओ
हरे कृष्णा। जगन्नाथ संजत्रा महामहोत्सव की जय। जय जगन्नाथ शुचिरानन्दन जय। जय जगन्नाथ शुचिरानन्दन त्रिभुवन करे जा चरण वन्दन त्रिभुवन करे जा चरण वन्दन जय। जय जगन्नाथ शुचिरानन्दन त्रिभुवन करे जा चरण वन्दन जय। जय जगन्नाथ शुचिरानन्दन त्रिभुवन करे जा चरण वन्दन नीलाचल शङ्ख चक्र गदा पद्म धर नीलाचल शङ्ख चक्र गदा पद्म धर नदिया नागरे दण्ड कमण्डल कर नदिया नागरे दण्ड कमण्डल कर जय। जय जगन्नाथ शुचिरानन्दन त्रिभुवन करे जा चरण वन्दन केह बोले पुरबेते रावण बधिला केह बोले पुरबेते रावण बधिला गोल केर वैभव लीला प्रकाश करिला गोल केर वैभव लीला प्रकाश करिला जय। जय जगन्नाथ शुचिरानन्दन त्रिभुवन करे जा चरण वन्दन शिराधार भावे एबे गोराय अवतार 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 हरे कृष्ण नाम गौ करिला प्रचार हरे कृष्ण नाम गौ करिला प्रचार वासुदेव घोष बले करि जोर हा
वासुदेव घोष वाले कोरी जो दोहा जे गौर से कृष्ण से जगन्नाथ जे गौर से कृष्ण से जगन्नाथ वासुदेव घोष वाले कोरी जो दोहा जे गौर से कृष्ण से जगन्नाथ जे गौर से कृष्ण से जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन जय जय जगन्नाथ चिरानंदन त्रिभुवन करे जा चरण बंदन त्रिभु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय सचिदानंदन जय सचिदानंदन सचिदानंदन जय सचिदानंदन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ नितय गौर हरि बल हरि बल हरि बल हरि बल नितय हरि बल हरि बल हरि बल हरि बल नितय गौर हरि बल हरि बल हरि बल हरि बल नितय गौर हरि बल हरि बल हरि बल हरि बल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे 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 तोमा बिना के दयालु जगत संसारे तोमा बिना आलू जगत संसारे तोमा बिना के दयालु जगत संग चारे तुम बिना के दयालु जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे पतित पावन हेतु तब अवतार पतित पावन हेतु तब अवतार पतित पावन हेतु तब अवतार श्याम पतिता प्रभु ना पाइबे आर मोशाम प्रभु ना पाइबे आर मोशाम पतिता प्रभु ना पाइबे आर मोशाम पतिता प्रभु ना पाइबे आर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया का दमोरे श्री कृष्ण चैतन्य